الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدرجة کے ناظرین پروگرام سبق آموز خبریں لیے حاضر ہیں. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آئیے سب سے پہلے جھلکیاں دیکھتے ہیں.
پاکستان میں کئی بیماریاں عام ہیں اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، لیکن ملک کی آبادی کا 35% حصہ پھیپھڑوں کی مختلف بیماریوں کا شکار ہے.
پاکستان میں سگریٹ نوشی اور تمباکو کے استعمال سے سالانہ 1,66,000 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں.
طبی ماہرین بلڈ پریشر کو خاموش قاتل قرار دیتے ہیں. پتنگ بازی پر پابندی کے باوجود یہ خطرناک کھیل جاری ہے. گزشتہ سالوں کے دوران قاتل ڈور پھرنے سے چھوٹے بچوں سمیت کئی ہلاکتیں ہو چکی ہیں.
کچھ غذائیں ایسی ہیں جنہیں اس موسم میں کم استعمال کرنا ہی بہتر ہوتا ہے.
نوجوان اگر کم ہمدردی، بے شرمی اور جرم کے حامل ہوں اور اس کے ساتھ اگر وہ تشدد کو غلط محسوس نہیں کرتے ہیں تو ان میں پرتشدد کاروائیوں میں ملوث ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے.
سردی آتے ہی گیس ہیٹر کے استعمال میں اضافہ ہو رہا ہے اور گیس لیکیج سے حادثات رپورٹ ہو رہے ہیں.
ایک تل حقیقت ہمارے سامنے ہے کہ معاشرے میں شیخی دکھانا اور بڑائی ظاہر کرنا عام ہو گیا ہے. اس کا زیادہ اثر اور شواہد آپ کو آن لائن نظر آتے ہیں.
مختلف فوڈ ریسرچز میں پروسیس فوڈ سے جڑے خطرات سامنے آ رہے ہیں.
پھیپھڑوں کے تعلق سے ایک ہمارے پاس خبر ہے اور اس کی ایک پولیس رپورٹ ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں.
ایک تہائی سے زائد پاکستانی پھیپھڑوں کی بیماریوں میں مبتلا نکلے. پاکستان میں کئی بیماریاں عام ہیں اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، لیکن ملک کی آبادی کا 35% حصہ پھیپھڑوں کی مختلف بیماریوں کا شکار ہے. ایک کانفرنس میں انکشاف کیا کہ سردیوں میں سموگ اور گیس کی بندش سے لکڑی اور مٹی کا تیل سانس کی بیماریوں کو عام کر رہی ہے. ملک میں سگریٹ اور تمباکو نوشی سے 45% آبادی متاثر ہے، جس سے ایک جانب پھیپھڑوں میں کینسر تو دوسری جانب منہ، گلے اور حلق کے کینسر بھی عام ہو رہے ہیں. کانفرنس میں بتایا گیا کہ ٹی بی، نمونیا، دمہ، سوتے میں سانس کی بیماریاں عام ہو رہی ہیں. ماہرین کے مطابق ٹی بی دنیا میں ختم ہوتی جا رہی ہے، بدقسمتی سے پاکستان میں اس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. ٹی بی کا مریض ایک سال میں 10 لوگوں کو ٹی بی منتقل کرتا ہے. پاکستان دنیا کا 5واں ملک ہے جہاں سب سے زیادہ ٹی بی کے کیسز موجود ہیں. ہر 1,00,000 میں سے 160 لوگ ٹی بی کا شکار ہوتے ہیں.
اس میں جو دھوئیں بھرا جو ماحول ہے نا، کہیں کچرے میں آ گیا وہ دھواں ہی دھواں، اور اس میں جو گندگی اور جو خرابیاں ہیں، ہمارے ٹریفک کا حال دیکھیے، گاڑیوں سے دھواں ہی دھواں ہیں. اتنی مطلب کہ یہ ایک ماحول، ہمارا وہ فضائی آلودگی جس کو آپ کہتے ہیں، وہ اس کا ہمارے سامنا ہے کہ اب سانس، بندہ سانس تو لے گا نا، سانس لے گا تو اندر جو بھی گیا. اسی طرح گھروں میں جو سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، میں نے پچھلے بھی پروگرام میں اس پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کی تھی، اب یہ گھر بھی دھواں 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 دھواں، مطلب مضر صحت چیزیں کتنی ہیں. تو اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. معاشرے کو ہمیں ہی کوشش کر کے صاف ستھرا رکھنا ہے، اپنی گلیوں کو، اپنے محلوں کو، اپنے علاقوں کو، اپنے شہروں کو ہم نے کوشش کرنی ہے. اور اس کے لیے صفائی، نظافت کی طبیعت ہماری بننی چاہیے، صاف ستھری طبیعت ہونی چاہیے. اور اگر کوئی گندگی، اس طرح کی چیزوں کو ڈسپوز آف کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اس کو کلیئر کرنا ہے، تو اس کا بھی ایک اچھا خوبصورت سا نظام ہونا چاہیے جو صحت کو برباد تو نہ کرتا ہو نا. ڈاکٹر کامران اس حوالے سے انشاءاللہ ہماری رہنمائی کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟
سردیوں کا موسم اسٹارٹ ہوتے ہی جو ہے ایک بہت ہی کامن سی بیماری ہیں، جو ہے سینے کی اور گلے کی بیماریاں عمومی طور پہ پیدا ہو جاتی ہیں، جو ایک وائرل انفیکشن ہوتا ہے جو ایک نارمل روٹین کے بعد، ایک ٹائم پیریڈ کے بعد ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہی نزلہ زکام اگر بڑھ جاتا ہے تو گلے میں خرابی کا سبب اور بعد میں سینے میں خرابی کا سبب بن جاتا ہے، جو کہ آگے جا کے بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو افیکٹڈ ہوتے ہیں، کچھ لوگ نہیں ہو پاتے ہیں. ان کی جو ڈیفنس میکنزم ہوتا ہے، قوت مدافعت جو ہوتی ہے، وہ بہت اچھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو بچ جاتے ہیں ان چیزوں سے. اور جن کی سینہ کمزور ہوتا ہے، پھیپھڑے کمزور ہوتے ہیں، تو وہ فوری طور پہ اس چیز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بالخصوص جو اسموکرس ہوتے ہیں، سگریٹ پینے والے لوگ ہوتے ہیں، یا دوسری چیزیں استعمال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان میں یہ سینے کی بیماریاں بڑی عام ہوتی ہیں. کیٹیگریز وائز لیں تو سینے کی بیماری سے اسٹارٹ لیتے ہیں، ایک وائرل انفیکشن ہوتا ہے یا ایک چھوٹا سا سینے کا انفیکشن ہوتا ہے، تو وہ مختلف دوائیاں وغیرہ استعمال کر کے کچھ ٹائم پیریڈ کے بعد ختم ہو جاتا ہے، لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں سینے کی جو کہ کافی بڑی بیماریاں ہوتی ہیں اور تھوڑا سا ٹائم پیریڈ بھی لمبا ہوتا ہے ان کا علاج کا بھی، بعض اوقات تکلیف دہ بھی ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ ایک ٹی بی ہے، ٹی بی میں ایک بہت لمبا پیریڈ ہوتا ہے ٹریٹمنٹ کا، وہ بڑا صبر آزما ہوتا ہے، اور اسی طرح اگر ہم پھیپھڑوں کے سرطان یعنی کینسر کی اگر ہم بات کرتے تو وہ بڑا ہی تکلیف دہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات مریض کے لیے اس کا علاج کروانا۔ تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں سینے کی بیماریوں کا اضافہ کافی زیادہ ہو رہا ہے، اور اس کی ایک متواتر وجہ یہی نظر آتی ہے زیادہ تر کہ آپ کی جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ کافی حد تک آپ کا تبدیل ہوا ہے، تمباکو نوشی بہت عام ہو چکی ہے، ٹوبیکو کسی بھی شکل کے اندر، پان کی شکل کے اندر، گٹکے کی شکل کے اندر استعمال کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے، پھر ہمارے یہاں جو پالوشن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ چیزیں بہت زیادہ پھیلتی چلی جا رہی ہیں، تو یہ تمام فیکٹرس مل کے جو ہے نا سینے کی بیماریوں میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، اور بالخصوص سردیوں میں اس کا اضافہ ایک کافی لیول کے اوپر تلک چلا جاتا ہے۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو جو بھی ایک فیکٹرز ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ آپ اسموکنگ وغیرہ کرتے ہیں یا وہ ٹوبیکو وغیرہ، تمباکو وغیرہ کسی بھی شکل میں اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کو آپ کو ترک کرنا پڑے گا، اس کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ غذا جو ہے آپ نے ایک اچھی غذا کا استعمال کرنا پڑے گا، مناسب غذا کا استعمال کرنا پڑے گا جس کے اندر جو ہے چکناہٹ اور بادی چیزیں جو ہیں نا وہ نہ ہو، اور بے وقت کا کھانا، جیسے رات کو عموماً ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ لیٹ نائٹ لوگ کھانا کھاتے ہیں، اور پھر اس کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ آئلی اشیاء جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہیں، یا پھر جو تلی ہوئی اشیاء کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح جا کے وہ لیٹ جاتے ہیں تو اس میں بہت ساری مشکلات پیش آتی ہیں، سانس لینے میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو ان تمام روٹین کو آپ کو چینج کرنا پڑے گا، ہلکی پھلکی ایکسرسائز آپ رکھ سکتے ہیں، ایک متوازن غذا کا استعمال کر سکتے ہیں، ان سے آپ کافی حد تک کور کر سکتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ کسی کو یہ چیز ہو جاتی ہے تو دو تین چیزیں آدمی انسان ذہن میں رکھے کہ یہ چیزیں علامت آ رہی ہیں تو ان کو ڈاکٹر سے رجوع کر لینا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک فرسٹ علامت جو آتی ہے سینے کی خرابی کی وہ آتی ہے کھانسی۔ اب کھانسی کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ کھانسی آیا بعض اوقات بلغمی کھانسی بھی ہوتی ہے اور خشک کھانسی بھی ہوتی ہے۔ یہ موسم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں عموماً گلے کی خراش پیدا ہو جاتی ہے، تو گلے کی خراش کی وجہ سے بھی خشک کھانسی ہو سکتی ہے، لیکن جب آدمی سینے کی کھانسی ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ کو بلغمی کھانسی عمومی طور پہ زیادہ تر ملتی ہے۔ اب جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ یہ علامت بتاتے ہیں تو پھر ڈاکٹر فردر آپ سے سوالات پوچھتے ہیں کہ اس میں بہت ساری علامات اور بھی پائی جاتی ہیں کہ بخار کی کیفیت بھی ملتی ہے، آدمی کو سانس لینے میں تکلیف بھی ہوتی ہے، جسم میں درد کی تکلیف بھی ہوتی ہے، سر میں درد کی تکلیف بھی ہوتی ہے، اور وزن کا گرنا بھی ہوتا ہے۔ اب تین چار چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس کے اندر جو ہم بڑی بیماری کی طرح سوچتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک نارمل اگر آپ مریض ہمارے پاس آتا ہے تو وہ یہ بولتا ہے کہ ہمیں نزلہ زکام کھانسی ہو گئی ہے، ہم نے اس کو سمپل ٹریٹمنٹ دی، دو چار دن پانچ دن کے بعد وہ سیٹل ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہی چیز اس کی پرسسٹنٹلی رہتی ہے، لگاتار رہتی ہے، دو تین ہفتے تک اس کی شکایت رہتی ہے، تو پھر کسی بڑی بیماری کی طرف انڈیکیشن جاتی ہے، خدا نخواستہ ٹی بی کی کیفیت نہ ہو کہ یا پھر سرطان کی کیفیت یا کینسر کی کیفیت نہ ہو۔ اب ٹی بی کی کیفیت اگر ہوتی ہے تو ٹی بی کے اندر اگر آپ لے لیتے ہیں تو آدمی کو رات کے ٹائم جو ہے عمومی طور پہ بخار ہوتا ہے، لو گریڈ فیور ہوتا ہے، ہلکا بخار ہوتا ہے، کھانسی ہوتی ہے، اس کو یہ کیفیت ہوتی ہے، بعض اوقات سینے میں درد کی کیفیت بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک میجر علامات ہوتی ہیں جو بیسیکلی ایکس رے وغیرہ کروا کے اور کچھ ایک بلڈ ٹیسٹ کروا کے اس کو ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے، اور اسے ایک پراپر علاج بھی موجود ہے الحمدللہ، اس کے ذریعے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے ٹی بی کے اندر جو ڈاکٹر نے آپ کو ایڈوائز کیا ہے اس کو ضرور فالو کریں، وہ جو بھی ایک ٹائم پیریڈ آپ کو دیا گیا ہے علاج کا اس کے اوپر آپ کو علاج کروانا ہوتا ہے۔ عمومی طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ اس ٹائم پیریڈ پہ علاج نہیں کرواتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو مزید نقصان ہو جاتا ہے، علاج جب دوبارہ آپ کروانا جاتے ہیں تو اس کے اخراجات بھی آپ کے مزید بڑھ جاتے ہیں۔ تو انیشیلی آپ جو ہے جو آپ کو ڈاکٹر گائیڈ لائن دے رہا ہوتا ہے، جو بھی آپ کو ریجیم دے رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے ڈیوریشن کے لیے، اتنے عرصے کے لیے آپ نے دوا استعمال کرنی ہے، تو اس طریقے سے آپ دوا کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس موذی مرض سے افاقہ ہو جائے گا۔ کینسر کے حوالے سے جب آپ کا پھیپھڑوں کا سرطان ہوتا ہے تو اس میں بھی کم و بیش اسی قسم کی علامات ہوتی ہیں کہ آپ کو وزن بھی گرنا ہو جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بعض کنڈیشنز کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ سمپٹم لیس بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی اور بیماری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں لیکن ایکسیڈنٹلی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی سینے کے اندر ان کو کینسر ہوا ہوا ہے یا پھیپھڑے خراب ہوئے ہیں، تو اس کا بھی جو ہے اگر پراپرلی وقت پہ اگر آپ اس کی تشخیص کروا لیں تو اس میں بھی کافی حد تک آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. کچھ بیماریاں بڑی کامنلی ہوتی ہیں جیسے نمونیا ہے، نمونیا کی بیماری بھی ایسی ہوتی ہے کہ ہمارا لنگ ہوتا ہے، لنگ کے اندر پھیپھڑوں کے اندر جو کسی نہ کسی ایریے کے اوپر ایک بیکٹیریا ہوتا ہے وہ جا کے افیکٹ کرتا ہے، اور پھر وہاں پہ وہی جو اس کی سانس کی نالیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، اس میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے، بلغم پیدا ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ اس کو ہلکا پھلکا سانس لینے کی تکلیف ہو جاتی ہے، یا پھر درد کی کیفیت بھی آ جاتی ہے، بخار کی کیفیت بھی آتی ہے. وقت پر آپ جائیں گے ڈائگنوسس پراپرلی ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ کیوریبل ہے، ٹھیک ہونے والی چیز ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے اگر پراپرلی ٹریٹمنٹ کیا جائے. اسی طرح دمے کی بیماری آتی ہے سانس کی، جب دمے کی بیماری کے اوپر آپ بات کرتے ہیں تو دمے بھی بچوں میں بھی پایا جاتا ہے اور بڑوں میں بھی پایا جاتا ہے. بعض اوقات بچوں میں شروع سے دمے کی بیماری ہوتی ہے، کچھ جینیٹکلی آتی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، کچھ ماحول کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ ریموٹ ایریاز ہیں، وہاں پہ کوئی فیکٹری والا ایریا ہے، وہاں پہ اسموک وغیرہ بہت زیادہ ہے یا پولوشن وغیرہ زیادہ ہے، تو وہاں پہ عموماً اکثر جو وہاں کی لوکیلٹی رہنے والی ہوتی ہے ان میں یہ سانس کی تکلیف عام ہوتی ہے. تو وہ ایریا ہم کو بیسیکلی اس کو تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے، جو انوائرمنٹ ہے اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر بچوں میں یہ تکلیف ہو تو اس میں بھی علامات اسی قسم کی آتی ہیں، ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس کو پراپرلی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. سانس میں تکلیف ہو سکتی ہے، سانس میں جکڑن آ جاتی ہے، چھوٹی نالیوں میں جو یہ جکڑن آ جاتی ہے، سوجن آ جاتی ہے، بلغم جمع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بندے کو سانس لینے میں تکلیف پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کو بھی اگر آپ پراپرلی ٹریٹمنٹ کیا جائے تو یہ کیوریبل ہوتا ہے، ٹھیک کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں ٹھیک ہونے کے بعد احتیاط کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، کہ آپ جتنا زیادہ احتیاط کریں گے تو آپ کو ریکرنس ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کو دوبارہ اس کا اٹیک ہونے کے چانسز کافی کم ہو جاتے ہیں. ہو جاتا ہے دوبارہ اٹیک، لیکن وہ کچھ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، کچھ کھانے پینے میں ایسی چیز رہتی ہے، کچھ ماحول کی یہ صورتحال ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم بار بار جو ہے سانس کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر دمے کی شکایت لے کے ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑتا ہے. تو اوور آل اگر ہم دیکھیں تو سینے کی بیماریاں جو ہیں ہمارے ان جو فیکٹرز ہیں ان کی وجہ سے بڑا پھیلتی ہیں، اور جو انوائرمنٹل فیکٹر ہے اور جو ہمارا اسموک وغیرہ، اسموکنگ وغیرہ جو کرتے ہیں ان کی وجہ سے بھی یہ بہت زیادہ سینے کی بیماریاں پھیلتی ہیں. سینے کی بیماریوں سے بچنے کا سمپل آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی نارمل روٹین جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں آپ اس کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں. مثال کے طور پر سگریٹ وغیرہ ہے، تمباکو وغیرہ ہے، یا کسی ایسے انوائرمنٹ کے اندر کام کر رہے ہیں آپ، تو وہاں پہ آپ کو سینے کی تکلیفیں پیدا ہونا شروع ہو گئیں، تو کوشش کریں گے ایسے انوائرمنٹ سے اوائڈ کر کے کوئی ایسی جاب کرنا شروع کر دیں جہاں پہ آپ کو پرابلم نہ ہو. بصورت دیگر آپ کے لیے آزمائش اور پریشانی کا سبب یہ تمام کی تمام چیزیں بنتی رہیں گی. تو بہتر یہ ہے کہ ایک اچھے اور صاف ستھرے ماحول کے اندر آپ کام کریں تاکہ اپنے اور دوسروں کی صحت کا خیال رکھ سکیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ انٹرنیٹ، یہ موبائل، یہ گیجٹ، یہ سارا جو ہے ڈیوائسیز، اور یہ جو ایک ڈیجیٹل ورلڈ جو بن چکا ہے نا، پیرنٹس کو چاہیے کہ اب اس معاملے میں بھی اپنے آپ کو چوکنا کریں، اس حد تک معلومات رکھیں کہ ہم خود کو اور اپنی فیملی کو اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے آس پاس کو گناہوں سے بچا سکیں اور انہیں نیکی کے کام کی طرف ہم راغب کر سکیں. اب اس سے مطلب کہ خلاصی ہونا مشکل ہے، اتنی یہ زندگی کا حصہ بن چکا ہے موبائل اور اس طرح کی دیگر الیکٹرانک ڈیوائس کے، بہت مشکل ہو گیا. اب اس سے، اس کی خرابیوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ میں ایک جگہ پر ان لوگوں کے ساتھ میری یوں سمجھے کہ مشورہ تھا یا نشست تھی، بات چیت تھی، کہ جو مطلب آئی ٹی کے سافٹ ویئر کورسز کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں، آئی ٹی کورسز ہیں ان کے دیگر، تو ان کو میں نے درخواست کی تھی کہ آپ ایسی چیزیں بنائیں، ایسی اپلیکیشنس بنائیں کہ جب کوئی ایسا کوئی ڈیوائس آتی ہے، ایسا کوئی موبائل آتا ہے، یا ایسی کوئی بھی چیز مارکیٹ میں آتی ہے جس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ اس میں خرابیوں کی خرابیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں، تو لوگوں کو اس خرابیوں کا عادی بننے سے پہلے پہلے ہم کیوں نہ اس کی اچھائیوں کی طرف ان کی رہنمائی کر دیں. کیونکہ جب جدت یہ اس طرح کی ٹیکنالوجی آتی ہے تو اس سے بچنا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اس کی خرابیوں سے روکنے کا ذریعہ تو بیان کر سکتے کہ اگر آپ خرابیوں سے بچنا چاہتے تو یہ ذریعہ ہے. تو اس پر انہوں نے الحمدللہ اتفاق کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا یہ پاسبل ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح کی ڈسکشن ہوئی تھی انہوں نے اس پر کچھ غور کیا ہوگا، غور کرنے کی بھی اطلاع تھی، اللہ کرے گا تو کوئی پریکٹیکل چیز بھی سامنے آ جائے گی. تو یوں دنیا میں بہت سارے آئی ٹی ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو شاید ہو سکتا ہے میری یہ بات سن لیں. یعنی آپ یہ غور کریں کہ اگر کوئی طبقہ گناہوں کی طرف بلانے کے لیے یہ چیزیں بنا رہا ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ کوئی ایسا اللہ کے بندوں کا گروہ، کوئی عاشقان رسول کی کوئی ایسا گروہ ہو جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے والے ذرائع مارکیٹ میں لے کر آئے، اور یہ پوسیبل ہے، پوسیبل ہے، یہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے اور بالکل اس طرح بہت تیزی کے ساتھ قوم جا رہی ہے، اور یہ بہت بڑا پروفیشن اور بہت کچھ اس میں ہونے کی اطلاعات ہیں۔ تو اللہ کرے میری یہ بات کوئی کسی کے کانوں میں سے چلی جائے اور وہ اس پر کوئی کام کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، اللہ نے چاہا تو اثر بھی آنا شروع ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سردیوں میں گیس ہیٹر کا استعمال بڑھ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اموات، ہلاکتیں، آزمائشیں، جلنا اور بہت سارے نقصانات کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ تو سب سے پہلے گیس ہیٹر پر آپ کو ایک خبر بتاتے ہیں اور اس کے تعلق سے رپورٹ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جی،
سردی آتے ہی گیس ہیٹر کے استعمال میں اضافہ ہو رہا ہے اور گیس لیکیج سے حادثات رپورٹ ہو رہے ہیں، لہٰذا ہمیں احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے گیس ہیٹر کا استعمال کرنا چاہیے اور ان اسباب کا جائزہ لینا چاہیے جو گیس ہیٹر کی وجہ سے موت کا سبب بنتے ہیں۔ گیس ہیٹر ایک سہولت ہے لیکن اس کے ساتھ مختلف خطرات بھی وابستہ ہیں جو کہ حادثات کا سبب بنتے ہیں۔ کمروں میں تازہ ہوا کی آمد و رفت نہ ہونے کی وجہ سے آکسیجن کی کمی واقع ہو جاتی ہے، جس سے سانس لینے میں دشواری، بے ہوشی اور اموات ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہیٹر سے گیس کا اخراج دھماکے کا باعث بنتا ہے۔
اس میں کچھ چیزیں میں بھی مزید آپ کو ایڈ کر دیتا ہوں۔ جو نوزل جس میں گیس کا پائپ لگتا ہے، وہ نوزل جو ہے جو جس کی جو چابی ہوتی ہے، وہ بعض اوقات اتنی لوز ہوتی ہے جس میں لیکیج شروع ہو جاتی ہے، یا جب پائپ جس تار سے باندھا جاتا ہے وہ تار بعض اوقات جو وائرنگ ہوتی ہے وہ وائرنگ بھی بعض اوقات لوز ہو جاتی ہے، کیونکہ عموماً ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہو کہ گھر کے افراد ہی سارا یہ نظام کر لیتے ہو، لیکن کچھ ایسے کام بھی ہیں جو صرف ماہرین ہی بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔ ہم کرنے بیٹھتے ہیں تو کر تو ہم لیتے ہیں، ہم لگتا ہے کہ ہم نے کر لیا، اور فور دا ٹائم بینگ وہ اتنا بہت بڑا پرابلم آتا نہیں ہے، لیکن گریجولی آہستہ آہستہ وہ چیزیں لوز ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر نہ ہونے والے کام ہو جاتے ہیں۔ تو کئی کام ایسے ہیں جو ان کے ماہرین ہی سے کروانے میں ہی ہمیں فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہ الیکٹرسٹی کے کام ہیں، اس طرح گیس کے کام ہیں، اور بھی کئی مینٹیننس کی چیزیں، چھوٹی موٹی چیزیں آپ اور ہم گھر میں شاید کر سکتے ہیں، لیکن کچھ کام یا چند کام ایسے ہیں جو ہم اس میں ہاتھ نہ ڈالیں کیونکہ ہمیں تجربہ نہیں، آتا نہیں۔ آتا ہے، مہارت ہے، ایک الگ بات ہے۔ تو اب یہ گیس کا کام بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اس کا جو نوزل یا اس کے جو چابی ہے جہاں آپ نے گیس کی سپلائی آ رہی ہے، تو اس کا پراپر ہونا بہت ضروری ہے۔ سیکنڈ، وہ پائپ جس کے ذریعے گیس ہیٹر میں جا رہی ہے، وہ پائپ کا آپ جائزہ لیں کہ وہ بعض وقت کریک ہو جاتا ہے، یعنی کہ پورا سال تو اتنا استعمال ہوا نہیں ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں سے کریک ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی مٹیریل کا بھی پرابلم آتا ہے کہ مٹیریل کمزور ہوتا ہے تو پائپ کریک ہو جاتا ہے، شاید اتنا اندازہ نہیں ہوتا مگر اسے گیس لیک ہو رہی ہوتی ہے، اور چونکہ ادھر آگ جل رہی ہے، یعنی ہیٹر میں آگ جل رہی ہے، اور وہ گیس ڈائریکٹلی صرف ہیٹر میں جانے کے بجائے ہلکی ہلکی نوزل سے یا پائپ سے لیک ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کا عموماً اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا، اور چونکہ وہ بھی تھوڑی وہ بھر جاتی، اس کے بھرنے کی صورت میں پھر وہ آگ پکڑ لیتی ہے، اور خدا نہ خاصا کو بہت بڑا حادثہ واقعہ ہو سکتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم گیس بند ہو گئی، یعنی گیس کی سپلائی بند ہو گئی۔ اب گیس کی جیسے سپلائی بند ہوئی تو ہیٹر بند ہو گیا، اب ہیٹر بند ہو گیا تو گیس تو بند ہو گئی، ہیٹر بھی بند ہو گیا، لیکن گھنٹے دو گھنٹے کے بعد پاسیبل ہے کہ سپلائی شروع ہو جائے، اور آپ سو رہے ہیں، اب سپلائی تو شروع ہو گئی، گیس تو نکل رہی ہے، لیکن اب وہ ہیٹر تو بند ہے، ہیٹر جلے گا تو وہ گیس کو استعمال کرے گا، آگ استعمال کرے گی، تو اب چونکہ ہیٹر بند ہے، آگ کا استعمال نہیں ہو رہا، تو یوں مطلب کہ یہ نقصان کا اندیشہ ہو جاتا ہے، پھر کمرے میں گیس بڑھ جاتی ہے، چونکہ اس میں کمرہ بند ہوتا ہے چاروں طرف سے سردیوں میں، تو کہیں بھی کوئی آکسیجن وغیرہ کے پھر ایشوز آ جاتے ہیں، جیسا بھی آپ نے سنا تھا۔ تو اسی طرح کے کئی ایسے ایشوز ہیں جو دیکھے جا سکتے ہیں۔ ہیٹر کی کوالٹی دیکھیں، ہیٹر کس کوالٹی کا ہے۔ دنیا کے کئی ملکوں میں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں یہ گیس اور آگ کے ہیٹر ہے نہیں، ہیٹر ہیں، بہت سردی ہوتی ہے، انہوں نے بوائلنگ رکھا ہو، یعنی پانی، گرم پانی کا کوئی وہاں سسٹم ہوتا ہے दीवारों पर हीटर लगे हुए होते हैं और एक फिक्स हीटर होते हैं और वो पानी के बॉइलिंग पॉइंट पर वो चल रहे होते हैं, तो वो उनमें और हमारे यहाँ जो हीटर का इस्तेमाल होता है उनमें फर्क है। दुनिया में कई जगह पर इलेक्ट्रिसिटी इतनी सस्ती होती है या नॉर्मल होती है कि वहां पर इलेक्ट्रॉनिक हीटर का इस्तेमाल हो रहा होता है, तो वो एज सच फायर नहीं होती, आग नहीं होती, वो इलेक्ट्रॉनिक हीटर होता है और वो गर्म हवा दे रहा होता है और उससे भी मतलब के एक यूं तरह से कंफर्टेबल चीज पैदा हो जाती है। लेकिन ये हर जगह इस्तेमाल होना इतना मुश्किल है क्योंकि ये आई थिंक ये शायद इलेक्ट्रिक जो है पावर ये ज्यादा कंज्यूम करता है, ज्यादा लेता है, तो इस हवाले से भी ये एक चीज है। तो दुनिया में आपको ये केसेस इतने नहीं मिलेंगे, ये ज्यादातर केसेस वहां जहां पर प्रॉपरली गैस का हीटर इस्तेमाल होता है, मटेरियल कमजोर होता है, तरबियत की कमी होती है, ट्रेनिंग इतनी खास होती नहीं है और बेपरवाही वाला भी मिजाज जहां पर ज्यादा पाया जाता है, इस तरह की चीजें की वजह से हादसात बढ़ जाते हैं। लिहाजा मैं तमाम देखने सुनने वालों से दरख्वास्त करता हूं कि जो कुछ अर्ज किया गया है अगर आप गैस हीटर यूज कर ही रहे हैं तो काइंडली देख लीजिए कि कोई सा प्रॉब्लम ना हो। बेस्ट जो मैं ये मशवरा दे रहा हूं, बेस्ट यही है कि आप अगर हीटर शुरू कर दिया, हीटर से कुछ ना कुछ मतलब हीटिंग हो गई कमरे में, हीटिंग हो गई, अब आप गैस बंद कर दें, हीटर क्लोज कर दें और फिर आप मतलब के सो जाए कि एक अच्छा खासा एक माहौल बन जाता है जिससे ठंडी कम हो सकती है। तो वैसे भी आग बुझाकर सोना चाहिए। अल्लाह ताला आपकी हम सब की हिफाजत करे, दुनिया और आखरत की परेशानियों से बचाए, अल्लाह करीम दुनिया की भी आग से हमारी हिफाजत करे और जहन्नम की आग से भी अल्लाह ताला आपकी हम सब की हिफाजत करे। इसमें सफर में बड़ी एहतियात करनी पड़ती है कि सही ऐसा ना हो कि अच्छा अंदरूनी सीन का भी है। मैं ये बदीन की तरफ से लास्ट कहीं जा रहा था तो बिल्कुल धुंध थी, हालांकि मुझे ऐसा लगता था पंजाब में धुंध ज्यादा होती है लेकिन अंदरूनी सीन में भी बाकायदा धुंध ऐसी मिली मुझे। ये मेरा प्रैक्टिकल मैं आपको वाकया बयान कर रहा हूँ और वो भी बिल्कुल फजर के बाद का वक्त था और वो तो धुंध थी, तो रात ही का खाली वक्त नहीं होता, और भी औकात में धुंध आ जाती है, फॉक आ जाती है। इसमें एक और ये होता है कि जब खुदा ना खास्ता ऐसी कोई सूरत हाल आ जाए तो आपने गाड़ियों में देखा होगा जो आजकल तो खैर फैशन में और एक मुख्तलिफ नौयत की वो जहन से बनाई जाती लाइटें लगाई जाती हैं, कार के नीचे फॉक लाइट होती है, इसको फॉक लाइट ही कहते हैं, जो बिल्कुल नीचे की वो की तरफ होती है, जो नीचे का जो बम्पर होता है उस तरफ वो लगती है और वो फॉक लाइट होती है कि वो देती है रोड के नीचे की तरफ है। और आपने देखा होगा कि ट्रैक बने हुए होते हैं, स्पेशली येलो कलर के ट्रैक बने हुए होते हैं, रोड की साइड पे बने होते हैं, बीच में भी बने हुए होते हैं। अगर टोटल 100% मतलब जीरो ना हो, विजिबल अगर जीरो ना हो और कुछ सूरत हो तो ये फॉक लाइटों से आपको सड़क पर मौजूद ये जो ट्रैक होते हैं ना, स्पेशली साइड के ट्रैक होते हैं, वो ट्रैक नजर आ रहा होता है, पट्टे जिसको हम कहते हैं ना, पट्टे बने होते हैं, पट्टों की भी बाकायदा एक इसकी भी एक साइंस है, इसका एक ट्रैफिक के रूल्स अगर हम पढ़ते हैं तो ये बाकायदा ये ट्रैक और ये पट्टे हमें बताते हैं कि इसका मकसद क्या है। कहीं पर दो पट्टे एक साथ आ जाते हैं, कहीं सिंगल पट्टा एक साथ आ जाता है, ट्रैक जिसको कहते हैं, साइड ट्रैक आ जाते हैं, कहीं थोड़ा सा और कुशादगी आ जाती है, तो ये इस सब की वजूहात होती हैं, ये ऐसे ही नहीं बनाए जाते, ट्रैफिक रूल्स में ये सारी बातें पढ़ने को और समझने को मिलती हैं और पढ़ना समझना चाहिए। रूल्स को समझ के चलेंगे तो भी बहुत सारे हादसा से हम बच सकते हैं कि कहाँ पर हमने अगर गाड़ी आपको तेज चलानी है तो किस ट्रैक पर चलाएंगे, मीडियम चलानी किस ट्रैक पर चलाएंगे, स्लो चलना किस ट्रैक पर चलाएंगे, डबल इंडिकेटर का इस्तेमाल कब करेंगे, सिंगल इंडिकेटर का इस्तेमाल आप कब करेंगे, साइड मिरर का इस्तेमाल कब करेंगे, बैक मिरर का इस्तेमाल आप कब करेंगे, ये पूरी एक ट्रैफिक एक ड्राइविंग की एक पूरी एक वो रूल है, उसको समझने की हाजत और जरूरत रहती है। तो अगर आपको ऐसी कुछ खुदा ना खास्ता कोई धुंध का मामला हो तो अगर फॉग लाइटों का प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे तो उम्मीद करता हूं कि फिर फॉग लाइट भी होती है, फिर वो हैजर्ड लाइट भी होती है जो डबल इंडिकेटर जिसको हम कहते हैं, उससे सहूलत हो जाती है और आगे की तरफ ये हादसे से बंदा बच जाता है। बेस्ट वे तो यही होता है कि अगर कोई ऐसी चीज आ जाए रास्ते में और कोई आपको सहूलत मिल सकती है, जैसे हमारे यहाँ भी मोटर वे पर, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कई मोटर वे पर हमारी अथॉरिटीज ने ऐसे रेस्ट एरिया बना दिए हैं कि आप गाड़ी को साइड में लेकर आप खड़ी कर दें और वहां पर फिर आप वेट कर लें, आप तो कम खतरा हो जाता उस तरफ। लेकिन अगर कोई मतलब चल पड़ता है यार, चलो देखिए ये वो कहते हैं ना कि हिम्मत और हमाकत के फर्क को समझना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें ये हिम्मत नहीं है, हमाकत है। हिम्मत कुछ और शे, हमाकत कुछ और शे, यानी कि बेवकूफी वाला काम नहीं करना चाहिए। तो जहां मतलब हमें लगता है कि अभी रुक जाना चाहिए या जदवल कैंसिल कर देना चाहिए, स्केड्यूल कैंसिल कर देना चाहिए, फ्लाइटें कैंसिल हो जाती हैं, ट्रेनें कैंसिल हो जाती हैं और दुनिया भर में हो रहा होता है, तो आप भी थोड़ा कैंसिल कर देंगे, दो तीन दिन के बाद कर लेंगे या नेक्स्ट टाइम को ऐसा तय कर लेंगे, जान है तो जहान है। अपनी हिफाजत की फिक्र करें, आपका हादसा औरों का हादसा बन सकता है, आपका हादसा आपकी पूरी फैमिली का भी हादसा बन सकता है। अल्लाह ताला आपकी मेरी हम सब की हिफाजत करे। सर्दियों की बात चल रही है तो सर्दी और गिजाएं, इसका भी एक बहुत ही एक वजह से यू कहते हैं कि जब सर्दी आती है तो हम नॉर्मल कपड़ों से भी बाहर निकलते हैं, मोटे कपड़े पहनते हैं, स्वीटर पहनते हैं, जर्सी पहन लेते हैं, जैकेट पहन लेते हैं, लॉन्ग कोट पहन लेते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें होती है, लोग टोपियां पहन लेते हैं, शॉक्स पहन मोजे पहन लेते हैं, तो ये सारी चीजें, इनकी जो जुराबे होती है शॉक्स होते हैं वो भी मोटे ले लेते हैं, तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं सर्दियों में। इसी तरह सर्दियों में गिजाएं भी बदल जाती हैं, गिजाएं बदलना सर्दियों में ये भी बहुत जरूरी होता है। हम कहे कुछ भी तो ये नहीं है, मौसम बदला है तो कुछ तो बदलेगा ना, आपका लिबास बदला है, आपके आपने वो रजाई ले ली है, ब्लैंकेट ले ली है, आम दिनों में तो नहीं ले रहे थे, एक नॉर्मल चादर ओढ़कर बंदा सो जाता है, एसी आपके बंद हो गए, पंखे आपके बंद हो गए, इतना बड़ा चेंज आया तो गिजाओं में भी तो चेंज आएगा, नहीं आएगा, सर्दी है। इस पर आइए रिपोर्ट देखते हैं।
सर्दियों में कौन सी गिजाएं खानी चाहिए और कौन सी नहीं। मौसम सरमा में जहां हमें ठंडी हवाओं और सर्दी से अपने हाथों पैरों और जिस्म को बचाने के लिए उन्हीं मलबूसात का सहारा लेना पड़ता है, वहीं गिजा और खुराक में भी तब्दीली जरूरी होती है। हम मौसम सरमा में बहुत सी बेहतियाती कर बैठते हैं जो हमें नुकसान पहुँचा सकती है। कुछ गिजाएं ऐसी है जिन्हें इस मौसम में कम इस्तेमाल करना ही बेहतर होता है। सर्दी में नुकसानदेह गिजाएं, दूध से बनी मसनूआत। अगरचे दूध को मुकम्मल गिजा माना जाता है मगर मौसम सरमा में बेहतर यही है कि इसका इस्तेमाल कम कर देना चाहिए। माहिरीन के मुताबिक दूध बलगम का बाइस बनता है जो गले में खराश को बढ़ाने का सबब बन सकता है। सुर्ख गोश्त और अंडे, ये दोनों चीजें प्रोटीन के हुसूल का बेहतरीन जरिया है मगर बहुत ज्यादा प्रोटीन गले में मवाद के जितिमा का बाइस बन सकता है। खास तौर पर प्रोसेस गोश्त या ज्यादा चर्बी वाला गोश्त मसले का बाइस बन सकता है, जबकि मछली और मुर्गी निस्बतन बेहतरीन ऑप्शन है। तली हुई गिजाएं, डीप फ्राई गिजाएं ट्रांस फीड से भरपूर होती है और गिजाई फायदा जिस्म को पहुंचाने के बगैर ही कैलोरीज की मजमूनी मिकदार को बढ़ा देती है। इस तरह की गिजाएं बदहजमी या मैदे के दीगर मसाइल का बाइस बन सकती है। दूसरे मौसम के फल, कभी भी ऐसे फल को इस्तेमाल ना करें जो किसी और मौसम का हो, क्योंकि वो ताज़ा नहीं होता और बीमारी या तिब्बी मसाइल का बाइस बन सकता है। इसकी जगह ज्यादा तुर्श फल जैसे माल्टे, कीनू वगैरह का इस्तेमाल करें। तिब्बी माहिरीन का मानना है कि मौसम सरमा में ज्यादा मीठा खाना जिस्मानी दिफाई निज़ाम को कमजोर कर सकता है जो मुख्तलिफ अमराज के लिए जिस्म को आसान शिकार बना देता है। फायदेमंद गिजाएं, सर्दियों के मौसम में नज़ला, जुकाम, खांसी और फ्लू जैसी बीमारियां आम हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि चिकन सूप, रसदार फल, लहसुन, प्याज, अदरक, मछली और काली मिर्च का खाने में इस्तेमाल मस्कुरा बीमारियों से बचने के लिए इंतहाई मुफीद है। मौसम सरमा की रिवायती बीमारियों से बचने के लिए कुछ गिजाएं ऐसी हैं जिन्हें रोजमर्रा गिजा में शामिल करके सर्दियों में उन बीमारियों से महफूज रहा जा सकता है, जिनमें काबिले जिक्र चिकन सूप या मुर्गी का शोरबा है। सर्दियों के फ्रूट्स मौसमी, माल्टा, किनू वगैरह एंटीऑक्सीडेंट खूबियों से भरपूर होते हैं और इनमें शामिल विटामिन सी सर्दियों में हमारी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। लिहाजा इन फ्रूट्स को अपनी रोजाना की खुराक का हिस्सा बनाएं और सिट्रस फ्रूट्स के साथ टमाटर, सुर्ख मिर्च, आलू और शकरकंदी को भी अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। शहद उम्मुश शिफा है जिसमें विटामिन और मिनरल्स के साथ बेशुमार एंटीऑक्सीडेंट खूबियां शामिल है जो आपके जिस्म में मौसमी बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफियात पैदा करती है और सर्दी से मुतासिर नहीं होने देती। खुश्क मेवाजात सर्दियों में किसी इक्सीर से कम नहीं, लेकिन इसका इस्तेमाल सुबह के नाश्ते में करें ताकि ये मैदे पर भारी ना हो और मैदे को उनको हजम करने में आसानी हो। खुश्क मेवाजात में बादाम, अखरोट और पिस्ते के अलावा किशमिश, इंजीर और खुश्क खुबानी को भी शामिल करें। काली मिर्च, अजवाइन और हींग, इन तीनों चीजों को अपनी रोजाना की खुराक में शामिल करें। खास तौर पर अपनी चाय और कहवे में इनका इस्तेमाल बढ़ाएं ताकि आपको सर्दी ना लगे। गुड़ जहां आपके निजाम इंतजाम को बेहतर बनाते हैं, वहीं ये जिस्म में कुव्वत मुदाफियात को मजबूत बनाने में भी इंतहाई मददगार हैं।
जी डॉक्टर सलमान हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, सर्दी की गिजाएं मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू पर, वैसे तो माशाल्लाह काफी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट थी, ये
काफी
बहुत सारी चीजें कवर की गई हैं। लेकिन चूंकि वो जल्दी में कवर करते हैं, क्या कहते हैं आप
इसे? इसमें तवज्जो बस इस पे दिलानी थी, गिजा सर्दियों में अमूमन लोग बढ़ा देते हैं, कुछ ऐसी गिजाएं भी लेने शुरू कर देते हैं जो नॉर्मली नहीं ले रहे होते, जैसे पाए वगैरह होते हैं या सूप वगैरह यखनी वगैरह। तो अपनी एज और अपना वजन और अपनी एग्जिस्टिंग कंडीशन, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं या इस तरह की बीमारियां हैं, इन चीज़ों को देखते हुए अपनी गिजाओं को फिर तब्दील किया जाएगा, वरना एक पैटर्न चला हुआ आ रहा होता है कि ये आता है सीजन तो ये गिजाएं इस्तेमाल हो रही होती हैं।
मतलब ये जो कुछ बयान हुआ इस पर भी डॉक्टर से एडवाइस के बाद आगे बढ़ा जाए।
ज़ाहिर है एज क्या है, 50 साल की उम्र है, डायबिटिक भी है, हाइपरटेंसिव भी है, तो हर चीज़ इसको सूट करे वो ज़रूरी नहीं है।
ठीक, प्यारे इस्लामी भाइयों, डॉक्टर सलमान की मौजूदगी में मैं एक आपको न्यूज़ बताऊंगा, रिपोर्ट ही है, ब्लड प्रेशर से वो रिलेटेड है। और ब्लड प्रेशर अभी, मतलब ब्लड प्रेशर की वजह से ऐसा लगता है कि कई चीज़ें पैदा हो जाती हैं, यानी हार्ट अटैक जैसी चीज़ें ब्लड प्रेशर से हो जाती हैं, और भी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं। तो ये एक इतनी कॉमन सी बीमारी अब होती चली जा रही है कि बीपी है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है। तो ब्लड प्रेशर पर एक हमारे पर रिपोर्ट है, फिर उस पर इंशाल्लाह हम डॉक्टर सलमान से इस मामले में इनकी माहिराना राय भी लेंगे। जी,
ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना जरूरी क्यों है? हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन से मुराद शरियानों के खिलाफ बढ़ता खून का दबाव है, जो वक्त गुजरने के साथ साथ खून की नालियों को नुकसान पहुंचाता है, जबकि दिल और गुर्दों की बीमारियों के साथ साथ स्ट्रोक का सबब भी बन सकता है। तिब्बी माहिरीन ब्लड प्रेशर को खामोश कातिल करार देते हैं, जिसकी वजह इस मरज का बड़े अरसे तक कोई भी अलामत जाहिर न करना है। मरकज बनाए तहफ़ुज़े अमराज की जानिब से जारी की जाने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक 75 मिलियन अमरीकी हाई ब्लड प्रेशर के मरज में मुबतला है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 80 मिलीमीटर मर्क्यूरी होना चाहिए, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के दौरान इस सतह में इजाफा हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर का बायस बनने वाले बाज असबाब इंसान के कंट्रोल में नहीं होते, जैसे उम्र, खानदानी अवामिल, नस्ल, जिंस वगैरह, लेकिन कुछ अवामिल ऐसे भी हैं जो इंसान के कंट्रोल में है, जैसे वर्जिश करना और बेहतर गिजा। आइए आज बात करते हैं कुछ उन तरीकेकार की जिनके जरिए ब्लड प्रेशर की सतह को मामूल पर रखा जा सकता है। बढ़ते वजन पर कंट्रोल। वजन में कमी लाना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाले सबसे मौसर तरीकों में से एक तरीका है। बाकायदगी से वर्जिश। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए जरूरी है कि वो हफ्ते भर में 150 मिनट और दिन भर में 30 मिनट जिस्मानी वर्जिश के लिए मुख्तस कर दें। मुतवाजन गिजा। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने या बढ़ाने में गिजाओं का किरदार बेहद अहम है, इसलिए ऐसी गिजाएं जिनमें पोटाशियम, मैग्नीशियम, फाइबर के साथ सोडियम की कम मकदार हो, वो ब्लड प्रेशर कम करने में मददगार साबित हो सकती है। इन गिजाओं में हरे पत्तों वाली सब्जियाँ, लहसुन, चुकंदर, गाजर, और फलों में केला, तरबूज, स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरीज, जबकि खुश्क मेवाजात में पिस्ता शामिल है। इसके अलावा जैतून का तेल, बगैर बालाई वाला दूध और दही का इस्तेमाल भी मुफीद है।
जी डॉक्टर साहब,
जैसे ब्लड प्रेशर के हवाले से इसमें बयान किया गया है कि साइलेंट किलर अमूमन इसको बोलते हैं, खामोश कातिल। बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है, इसकी मेजर अलामत तो ये होती है, जैसे जो स्मोकिंग की जिसको आदत होती है, चाय का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वजन जिनका ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, और एज फैक्टर के साथ और पान गुटखा वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इनके अंदर ब्लड प्रेशर के बढ़ने के चांसेस होते हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें काबिल गौर यह है कि ब्लड प्रेशर कॉन्स्टेंट मोडालिटी नहीं है, मतलब हर वक्त 120/80 ब्लड प्रेशर ज़रूरी नहीं है कि वो रहे, फ्लक्चुएट करता रहता है,
ऊपर नीचे होता रहता है,
ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसको मॉनिटर रखना होता है। और अमूमी तौर पे जिस पे तवज्जो दिलानी है वो ये, वंस अगर डायग्नोस हो गए ब्लड प्रेशर का मरीज, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एहतियातें छोड़ देनी है, क्योंकि डॉक्टर तो दवाइयाँ लिख देता है, दवाइयाँ अपनी जगह काम कर रही होती हैं। आपने सुना भी होगा कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, अब वो एक दवा से निकल के दूसरी दवा पे जा रहे होते हैं, जब तक के एहतियातें जैसे वजन का कम करना, गिजा के अंदर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, इसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं, जैसे दिन में कमोबेश 30 मिनट एक्सरसाइज करना या वॉक करना, नमक की कम इस्तेमाल करना, वजन का कम कर जाना, और गिजा के अंदर अपनी ग्रेजुअली कम करना, इसके साथ अगर आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन भी लेंगे तो ये जाके जब कंट्रोल होगा।
यानी बंदा मेडिसिन लेता रहे और इसके जो एहतियातें हैं
है।
उसको अगर ना लिफ्ट कराए
जी जी,
तो महज मेडिसिन दवाई लेने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए ये जरूरी नहीं है।
नहीं, हमें कॉम्प्लिकेशन आती
है, कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं,
उसमें स्ट्रोक है, फालिज है, जो हमें हॉस्पिटल के अंदर हमें मिलता है, तो ब्लड प्रेशर की मरीज भी दवा खा रहा होता है, लेकिन वो स्किप डोज का भी बहुत प्रॉब्लम होता है, پیشنٹ خود ڈائگنوز کر لیتا کہ آج میرا بلڈ پریشر ٹھیک ہے تو آج میں دوا لے رہا ہوں.
نہیں اچھا,
تو دوا اگر ونس آپ نے شروع کر دی تو دوا آپ پابندی کے ساتھ استعمال کریں, اپنی مرضی کے ساتھ دوا بند نہیں کریں. اور پھر یہ عموماً جب فالج کا پیشنٹ جب ہاسپٹل میں آتا ہے نا, ہم جب اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں یا ہسٹری لیتے ہیں تو اس میں یہی مل رہا ہوتا ہے کچھ دنوں سے بلڈ پریشر صحیح تھا
تو اس سے دوائی چھوڑ دی,
دوا بند کی.
ڈاکٹر صاحب دوائی جو چھوڑ دیتے ہیں اسپیشلی بی پی کے مریض,
جی جی,
تو جیسے ہم نے میڈیکلی طور پر سنا ہے کہ ایک بار بی پی کی بلڈ پریشر کی دوائی شروع ہو جائے اس کے بعد اس کا چھوٹنا اتنا آسان نہیں ہوتا, یعنی اس کی باقاعدہ ایک ہے ہسٹری ہے کہ اس کو لے کر چلنا پڑتا ہے. ڈوز کم زیادہ کیے جا سکتے ہیں لیکن میڈیسن بند ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا.
نہیں ایسا ویسا نہیں ہے,
تو لوگ جو میڈیسن بند کر دیتے ہیں وداؤٹ اینی ایڈوائز آف ڈاکٹر, تو اس معاملے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
ایسا سب سے پہلے تو یہ بلڈ پریشر کی میڈیسن اسٹارٹ کرنا بھی اتنا آسان کام نہیں ہے,
آسان نہیں ہے.
ڈاکٹر بھی اتنے آسان, کارڈیولوجسٹ ہوتا ہے اس کی بھی پوری ایویلیویشن ہوتی ہے, ہسٹری ہوتی ہے, اس کے بعد جا کے بلڈ پریشر کی میڈیسن پرسکرپشن کے اوپر آتی ہے. ونس پرسکرپشن کے اوپر یہ میڈیسن آ گئی اور آپ نے احتیاطیں رکھی اور یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ صبح دوپہر شام کی آپ اپنی ریڈنگ مانیٹر گھر میں سفگمومیٹر رکھ لیں, اگر ریڈنگ آپ کی کانسٹنٹ آ رہی ہے پچھلے 15 دن 20 دن سے ڈاکٹر سے رابطہ کریں, وہ اس کا ڈوز آپ کا پہلے ریڈیوس کرے گا, پھر اس کے بعد گریجولی کرتے کرتے یہ ٹیپر آف ہو جاتے ہیں.
اچھا ختم ہو سکتی ہے؟
بالکل ہو جاتا ہے.
گھر میں ایک الیکٹرانک مشین رکھی جاتی ہے, ایک تو وہ پمپ والا
بلڈ
پریشر چیک مینوئل ٹائپ کی ایک چیز ہوتی ہے,
ایک آتی ہے ڈیجیٹل,
اور ایک آتی ہے ڈیجیٹل کہ آپ بیڈ لگا دیں بٹن دبائیں اور وہ ایک آٹومیشن سسٹم کے تحت وہ پھر آپ کو بتا دیتی ہے. تو اس میں اور اس میں کچھ فرق پایا جاتا ہے؟
ڈیجیٹل کے اندر ایک تو آسانی ہے, اس میں تھوڑا سا ایرر ہوتا ہے 5 اور 10 کا کم و بیش
ہو جاتا ہے,
تھوڑا بہت ایرر ہوتا ہے تو وہ تھوڑا بہت سیکھ لیں گے سمجھ لیں گے. تو یہ ہے کہ کم از کم آپ کو بلڈ پریشر کا آئیڈیا ہو جائے گا اور بلڈ پریشر کی میڈیسن آپ کی ہو سکتا ہے آپ کا بلڈ پریشر لو پھر آپ نے بلڈ پریشر کی دوا لے لی تو وہ اور لوور سائڈ پہ بھی چلے جاتا ہے, یہ الگ کمپلیکیشن ہوتی ہیں.
میں ڈاکٹر صاحب اینڈ میں یہ آپ سے عرض کروں گا کہ ڈاکٹر زیرک بھی شاید ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں, میں یہاں آپ دونوں ڈاکٹروں سے ایک مشورہ لینا چاہوں گا کہ دنیا میں میں مانتا ہوں کہ بی پی کے پیشنٹ ہیں, یعنی کہ بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں دنیا میں, لیکن آئی تھنک کہ میجورٹی پاپولیشن وہ ہے جو بی پی کی پیشنٹ نہیں ہے.
میجورٹی تو شاید نہیں,
نہیں ٹھیک ہے نا, 7.5 ارب کے اگر لوگ ہیں دنیا میں تو میجورٹی یہ, اچھا اس میں بچے نکال دیں دیگر نکال دیں, پھر بھی بلڈ پریشر کے اکثر لوگ ہیں جو بلڈ پریشر کے مریض نہیں ہیں, حالانکہ بلڈ پریشر کے مریض بہت بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں. تو جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کو تو ہم آپ نے ہم نے رپورٹ میں بتایا کہ اب اس طرح اپنے کنٹرول کریں, لیکن ایک شخص جو بی پی کا مریض نہیں ہے اس کو بلڈ پریشر نہیں ہے
بچنا چاہتا,
اس کو کیا آپ ایڈوائز کریں گے کہ آپ اس انداز پر اپنا لائف اسٹائل رکھیں تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ آپ بی پی کے اس پرابلم سے بچ سکیں گے.
وزن اپنا چیک کر لیں,
اوکے,
اس کے بعد اپنا عمر چیک کر لیں اور اپنی ہیٹنگ کھانے پینے کی عادت, نمک, چائے, کولڈ ڈرنک, کافی اور یہ اسموکنگ, پان گٹکا, یہ چیزیں شامل ہے. تو یہ پھر اگر یہ ساری کٹ ڈاؤن کریں,
یعنی اگر کوئی سگریٹ والا ہے تو اسے سگریٹ چھوڑ دینی چاہیے. سگریٹ کی عادت سے میں جو سمجھ پا رہا ہوں کہ اسموکنگ یہ بی پی لا سکتا ہے.
بالکل.
اچھا ایکسٹرا آرڈنری چائے کہیں گے,
چائے کسی بھی فارم میں ہو,
مطلب روز کے 1-2 کپ پیتا ہے تب بھی خطرہ ہی ہے.
خطرہ تو وہ کنسیڈر کیا جائے گا, ریڈیوس کریں, جب آپ نے بچنا ہی ہے تو پھر احتیاط کریں,
چائے سے بچے.
چائے سے
ٹھیک ہے. اچھا کافی سے بچے آپ کہہ رہے ہیں,
کافی کو
کیفین ہوتی ہے اس کے اندر,
کیفینیٹڈ ہے,
تو یہ کبھی کبھی چلے یا
کبھی کبھی احتیاطاً ہے.
اچھا ٹھیک ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ
نمک,
نمک
مسالہ
زیادہ نمک نہ ہو, یعنی کہ
نمک ہاں کم,
بہت مطلب بالکل نارمل سائڈ پہ جائے نمک,
مسالہ
لو سائڈ پہ نمک ہو, یہی ہے
لو سائڈ پہ,
لو سائڈ پہ نمک ہو. اور دوسرا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
مسالہ اور گوشت, چکنائی,
چکنائی سے بچے, اس سے ہے یعنی کہ بلڈ میں ایسی چکناہٹ پیدا نہ ہونے دیں.
بالکل بالکل.
اور اپنی نسوں اور وین کے اندر اس کے اندر بھی کوئی مطلب کنجسٹڈ وہ نہ ہو جائے,
نالیوں کے اندر جم جاتا ہے, پلاک بن جاتا ہے.
اپنا یورک ایسڈ کنٹرول رکھے,
بالکل یہ مانیٹر رکھنا.
اچھا ٹرائگلیسرائیڈ بھی کنٹرول رکھے,
یہ بھی مانیٹر رکھنا.
اچھا اپنا کولیسٹرول بھی کنٹرول رکھے,
لیپڈ پروفائل,
لیپڈ پروفائل اپنا یہ پراپر ہی कराता रहे ताकि इसके हमें रीडिंग आती रहे
जी।
हर छह महीने में एक बार आप रिकमेंड करते हैं नॉर्मल आदमी को लैपिड प्रोफाइल या 12 महीने में 8
छह महीने में 40 साल की एज ऊपर हो जाए तो कम 6 महीने में ये एक दफा करा
एक बार लैपिड प्रोफाइल करा ले जिससे 12 घंटे की फास्टिंग नहीं यानी 12 घंटे तक आप कुछ ना खाएं। ये कोई बहुत ह्यूज टेस्ट नहीं है, ये मैं आपको भी मशवरा दूंगा डॉक्टर साहब की मौजूदगी में कि हर छह यानी आप नॉर्मल हैं तो हर छह महीने में 6 मंथ यानी साल में 2 दफा हो जाएगा ना, ट्वाइस अ ईयर हो जाएगा, तो आप लिपिड प्रोफाइल अपना करा लें। इसमें आपका कोलेस्ट्रॉल भी आ जाएगा और आपका ट्राइग्लिसराइड भी आ जाएगा, आपका यूरिक एसिड भी आ जाएगा, ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाती हैं, ठीक है डॉक्टर साहब। इसके साथ साथ आप शुगर को भी साथ ऐड कर लें। जब आप फास्टिंग कर रहे हैं कि इसमें 12 घंटे आपको खाना पीना भी नहीं है डॉक्टर साहब,
पानी पी सकते हैं
लेकिन खाना नहीं खा सकते,
खाना नहीं फास्टिंग,
ठीक है फास्टिंग है तो आप खाएंगे नहीं, लेकिन चाय भी नहीं पी सकते डॉक्टर साहब,
नहीं चाय भी नहीं पी सकते
सिर्फ पानी पिएंगे डॉक्टर साहब।
चाय में तो वैसे ही एहतियात
एहतियात का फरमा दिया। तो अब ये भूखा रहना है आपने 12 घंटे और 12 घंटे अच्छा ये मुझे याद पड़ता है कि 12 घंटे से ज्यादा ओवर भी ना हो जाए,
ज्यादा नहीं
12 घंटे 13 घंटे के अंदर
8 और 12 घंटे के बीच में
सैंपल दे सकते हैं डॉक्टर साहब, मतलब 10 घंटे अगर हो गए तो सैंपल जा सकता है,
जा सकता है,
इसमें कोई वो इशू नहीं है,
12 घंटे से ज्यादा नहीं,
12 घंटे से ऊपर ना हो। ओके तो ये कराएं इंशाल्लाह। इसमें आप इसमें सेरम क्रिएटिनिन को भी डॉक्टर साहब अगर ऐड कर लें ताकि गुर्दों के ताल्लुक से भी मॉनिटरिंग,
पूरा एक टेस्ट आता है यूसीई के नाम से,
यूसीई
तो उसमें फिर सारे पूरे किडनी फंक्शन कम उबेश आ जाते हैं वैल्यूएशन,
तो यूसीई करा लें,
ये करा लें,
ये इसी ब्लड में चला जाएगा,
इसी सैंपल से
चला, ये जो सैंपल आपका ब्लड का जा रहा है इसको आप ये जो मैं कह रहा हूँ कि एक ब्लड सैंपल आपका जाएगा, आई थिंक 2 इसमें बॉटल छोटी छोटी सी जो ब्लड का सैंपल जिसमें जाता है वो 2 होंगे, एक ही शरीर में काम हो जाएगा 1 टाइम में। तो इसमें आपका लिपिड प्रोफाइल हो जाएगा और इसमें ट्राइग्लिसराइड भी आ जाएगा, यूरिक एसिड भी आ जाएगा, साइड राइट, और साथ आप कहते हैं भाई शुगर भी डाल दें, शुगर डाल दें, यूरिया क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट ओके, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इससे इंशाल्लाह गुर्दे की भी आपकी मॉनिटरिंग हो जाएगी, हार्ट डिजीज के ताल्लुक से भी आप मतलब के इसमें हो जाएगा, शुगर के ताल्लुक से भी हो जाएगा। तो ये हर 6 महीने में नॉर्मल जो है जिनको बेसिकली जो देखते हैं कि हमको इतना हमें प्रॉब्लम नहीं है तो ये आप करा लिया करें। और अगर बिलफस खुदा ना खास्ता कोई चीज निकल आए तो डॉक्टर साहब फिर आप हर 3 महीने कहेंगे,
निकल आए तो उसका परहेज करें और हर 3 महीने में इसको मॉनिटर करें और डॉक्टर से अपने रابطہ
में करें। तो ये इसको आप याद कर लें। मैं तमाम तर जितने भी देखने सुनने वाले हैं मेल फीमेल मैं सबको अर्ज कर रहा हूँ प्लीज इसको लाइट ना लें, ना कराने की सूरत में तकलीफ ज्यादा हो सकती है। यानी अभी आप नॉर्मल हैं घर में है आपको नहीं लगता कि आपको कुछ है, अल्लाह आपकी हम सबकी हिफाजत करे, ठीक है। अब चीजें दबी हुई होती हैं, खुदा ना खासा किसी ने भी अटैक किया और हॉस्पिटल चले गए, अब हॉस्पिटल जाकर सारे टेस्ट होने फिर आप क्या करेंगे। तो हॉस्पिटलाइज होने से पहले पहले अगर घर पर एहतियात करके ये टेस्ट का निजाम आप बना लेते हैं, ये पाकिस्तान में शायद 1500-2000 से ऊपर का टेस्ट नहीं है जो मैंने अभी आपको बयान किया है, नहीं ऐसे 1500-2000 से ऊपर का ये टेस्ट नहीं, इसी के अंदर अंदर ये टेस्ट हो जाते हैं। तो अब 6 महीने में 1500-2000 रुपए का आप टेस्ट करवा लेते हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे आपको बहुत सारे परेशानियों से बचने की वो मौका मिलेगा। और अगर खुदा ना खास्ता शुगर कोलेस्ट्रॉल इस तरह की चीजें आ जाती हैं तो फिर आप डॉक्टर से मशवरा कर कर इसको कैसे कंट्रोल करना है ये आप अल्लाह ने चाहा तो कर लेंगे। ये प्लीज इसको सीरियस लीजिएगा, मेरी आपसे दरख्वास्त है, अल्लाह हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ जीना नसीब फरमाए और हम इसे जीने में उस रब्बे करीम की खूब खूब इबादत करके उसको राजी करने में कामयाब हो जाएं। डॉक्टर साहब बात सिगरेट की भी चली थी, सिगरेट भी छोड़ दें, टोबैको से भी प्रॉब्लम हो सकता है,
टोबैको
सिगरेट में टोबैको ही है लेकिन ये गुटखा पान ये सारी चीजें छोड़ें। तो इंशाल्लाह पान गुटखा सिगरेट ये भी बहुत नुकसानदेह, इस वक्त सिगरेट की वजह से जो इश्यूज आ रहे हैं आइए एक उसकी पहले एक रिपोर्ट देखते हैं।
तम्बाकू नोशी और डायबिटीज पाकिस्तान में सालाना 5,66,000 अफराद की हलाकत का सबब बन रहे हैं, जबकि इसके नतीजे में सालाना 2,00,000 से ज्यादा अफराद टांगे कटने के नतीजे में माजूर हो जाते हैं। तिब के माहिरीन ने कहा है कि पाकिस्तान में सिगरेट नोशी और तम्बाकू के इस्तेमाल से सालाना 1,66,000 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, जबकि डायबिटीज के नतीजे में सालाना 4,00,000 अफराद जान बहक हो रहे हैं। ज्यादा खतरे की बात यह है कि डायबिटीज के मर्ज में मुबतला अफराद जो सिगरेट पीते हैं उनमें टांगे कटने की शराब बहुत ज्यादा है, और अगर ऐसे अफराद दिल के दौरे और फालिश से भी बच जाएं तो उनमें टांगे कटने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। यूरोप में डायबिटीज के मरीजों में पाँव के जख्मों की शराब महज 2% है, जबकि पाकिस्तान में पाँव के जख्मों की शराब 10% से ज्यादा है। माहिर सेहत ने शुगर के मरीजों को मशवरा दिया है कि वो रोजाना अपने पैरों का मुआयना करें, नाखूनों को काटने की तरबियत हासिल करें, नंगे पैर चलने से गुरेज करें ताकि पैरों को जख्मों से बचाया जा सके।
पाँव के ताल्लुक से बहुत एहतियात करनी पड़ती है कि पाँव की वजह से समटाइम बहुत सारे इश्यूज पैदा हो जाते हैं, हम बाज़ वक़्त केयर नहीं करते। मैं तो इसको मैं ये समझता हूँ कि शायद इस तरह की एहतियात भरी जिंदगी का हमारे शायद कैरिकुलम में भी कोई हिस्सा नहीं है, यानी हमारी जो तालीमी इदारे हैं इसमें सेहतमंद रहने के ताल्लुक से एक मेडिकली गाइडेंस के होने के ताल्लुक से यानी कि तिब्बी तौर पर एक गाइड किया जाए इसके ताल्लुक से कि किन किन चीज़ों से आप बीमार हो जाते हैं, खाने पीने के ताल्लुक से और जिस्मानी तौर पर कहाँ किस तरह आपको एहतियातें करनी है उसके ताल्लुक से को प्रॉपर गाइडेंस नहीं। आपको टीचर या कोई उस्ताद अलग से कोई अपनी एक्सपर्टीज के साथ या अपनी कोई दर्द के साथ कोई इस तरह की चीज़ें डिलीवर करे तो हो जाता है। और वेरी सॉरी टू से माजरत चाहता हूँ, घरों में भी ये माहौल नहीं होता। मैं खुद अपने बारे में जानता हूँ कि मतलब जब हम दावत इस्लामी के दीनी माहौल में आए, अल्लाह हमारे अमील सुन को सलामत रखे, इनको दराज़े उल खैर दे, पेट का कुफले मदीना, आदाब ताम और इस तरह की किताबें, वजन कम करने का तरीका, मुख्तसर रिसाला और फिर इस पर आपकी एक स्टडी और आपकी इस पर प्रॉपरली रिसर्च और उसके बाद जो आपने अपने लाखों करोड़ों आपसे जो वाबस्ता है इनको जो आपने गाइड किया है खाने पीने के ताल्लुक से और इसके बेहतियातियों के साथ क्या नुकसान हो जाता है इसके ताल्लुक से, ये एक बिल्कुल आपकी पर्सनैलिटी को बहुत एक्सक्लूसिव करता है, बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी बनाता है कि एक मतलब के इस्लामिक स्कॉलर और एक स्पिरिचुअल लीडर, एक स्पिरिचुअल मास्टर और एक पीर और एक आलिम और इस तरह एक मुरब्बी और रहनुमा के होने की हैसियत से ना सिर्फ इबादात यानी अकायद नजरियात अखलाकियात मामलात और दीगर चीज़ों को दुरुस्त करने के साथ साथ ये पर्सनैलिटी हमें यानी ये अमीर सुन्नत जैसी शख्सियत हमें बाकायदा सेहतमंद रहने का जो उसूल देती है। तो मैं यूं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये वो अल्लाह की रहमत से एक शख्सियत है हमारे दरमियान जो हमारी जिस्मानी और रूहानी दोनों को सेहतमंद रखने के तरीक़ेकार बयान कर रहे होते हैं। इससे इंशाल्लाह दिल भी पाकीज़ा, दिमाग भी पाकीज़ा, बदन भी पाकीज़ा और सेहत और तंदरुस्ती और नेकी और तकवा परहेजगारी के साथ ज़िंदगी गुजारने का मौका मिलता है, ये अल्लाह का बहुत करम है। तो ये चीज़ें अगर हमारी फैमिली में आ जाएं, हमारे वालिदैन में आ जाएं, हमारे दीगर टीचर्स में आ जाएं, हमारे असातिज़ाए किराम में आ जाएं, यकीन माने इतना फ़ायदा होगा कि मैं कोई नहीं क्या बयान करूँ और बहुत सारे प्रॉब्लम से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब ये जो खबर अभी आपके साथ शेयर की है पाँव कटने वाली, क्या कहते हैं?
ऐसा जैसे इसमें इन्होंने मेंशन किया बाहर मुल्कों में 2% और पाकिस्तान में
10%,
उसकी वजह है नेग्लिजेंस हमारी ना, जो केसेस अस्पताल में आते
हैं गफलत बहुत है
कि अब जैसे डायबिटिक पेशेंट हैं, इनको जख्म हो गया है, इनको रिकमेंड किया जाता है कि ये इसकी हीलिंग को पे तवज्जो दें,
यानी भर नहीं रहा है वो
ही हर ये तो अंडरस्टूड बात है, ये सब समझ लें कि डायबिटिक का जो शुगर का जो मरीज है इसके कुव्वत मुदाफ़े थोड़ी कम होती है, इनको जो नॉर्मल बंदे को जो जख्म हील होता है उससे थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है, किसी को एक दिन लगेगा तो इनको हो सकता है 2 या 3 दिन लगेंगे, तो इनको हीलिंग का टाइम इनका कम हो जाता है, बढ़ जाता है इनफैक्ट। तो ये अपने पाँव में जैसे चलते फिरते, अब तो डायबिटिक शूज़ अलग आ गए हैं इस नाम से, बिल्कुल
अच्छा
बिल्कुल डायबिटिक के शूज़ अलग होते हैं, वो टोटली कवर होते हैं, किसी भी तरह से आपको जख्म ना लगे, और अगर जख्म लग जाए तो उसमें प्रॉपर एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट भी होता है, केयर भी होता है, कुछ कंडीशन में हॉस्पिटलाइज कर लिया जाता है, जब तक ये जख्म पूरा क्योर नहीं होता तब तक नहीं निकाला जाता। उसके फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशन ये होती हैं कि अगर ये नहीं ठीक होता तो जो खून की सप्लाई, जो खून की नालियां आ रही होती है ना, उसमें गैंग्रीन बन जाता। गैंग्रीन से मुराद ये होता है कि ब्लड आ ही नहीं रहा होता, पांव काला पड़ना शुरू हो जाता। तो फिर वो कुछ सूरतों में टखने तक पांव काटा जाता, और अगर ये फर्दर अगर बढ़ गया या बढ़ता रहता है तो घुटने तक भी पांव काटा जाता। ये बीच से नहीं काटा जाता, जोड़ के ऊपर काटना पड़ता। तो ये सिर्फ जरा सा जख्म इनिशियल, अगर आप इनसे जो पेशेंट है जिसका पांव कटा या कटने वाला है हिस्ट्री लेंगे तो शुरू में हल्का सा जख्म हुआ था, उसकी एहतियात नहीं की, सुई लग गई, कुछ वो लग गई, वो बढ़ते 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 वो बात यहाँ तक आ जाती है। शुगर के मरीजों को अपने पांव का
वैसे ओवरऑल जनरली तौर पर मैं आपको अर्ज करूं प्यारे इस्लामी भाइयों कि सिगरेट और ये जो टोबैको आइटम है उसके साथ साथ ये गुटखा जो लोग खाते हैं इसको हम यूज समझे, गुटखा पान सिगरेट ये एक साथ एक वर्ड यूज किया जाता है, इसके नुकसान ही नुकसान, कोई दुनिया का आदमी इसका फायदा नहीं बयान कर सकता सिवाय नुकसान के, पैसों का नुकसान के साथ साथ जो आपका जिस्मानी नुकसान है यानी कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी ये सिगरेट पीने वालों को, पान गुटखा सिगरेट के जो इस्तेमाल के लोग हैं इन्हें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो जाती है, इनके मुंह सड़ जाते हैं, इनके गले सड़ जाते हैं, इनके दांत सड़ जाते हैं, इनका मतलब के मतलब जिस्म की कितनी चीजें इनकी सड़ जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। और अच्छा इसके बाद तो ये वैसे ही कुछ नहीं खा पी सकेंगे, अब तो खत्म हो जाता है इनका, इनकी तस्वीर बाकायदा मतलब के बाकायदा ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अभी अल्लाह की रहमत से अगर आप बचे हुए हैं, अगर चाहे ये चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या आपको नहीं लगता यार आपको छोड़ देना चाहिए? देखिए जिनके साथ ये वाकियात हुए ना आप उनसे एक जगह मिल तो ले, वो भी कहेंगे हमें ही पता था कि यार ये पान गुटखा सिगरेट से ये बीमारियां हो जाती हैं, लेकिन हमने ये कहा था कि यार अभी हमें कुछ नहीं होगा, यार हमें कुछ नहीं होगा और यार हमें हो गया, ये वो शायद कहेंगे आपको और आप भी शायद यही कह रहे होंगे। जब आप सिगरेट पी रहे होगा आपको कोई बोलेगा यार कुछ भी नहीं होता, बोले बस फेफड़े खत्म हो जाएंगे तुम्हें और बीमारियां लग जाएंगे, अरे कुछ भी नहीं होता यार पी रहा हो ना, अचानक ही होता है और वो अचानक भी कहने को अचानक है, वो अंदर तो वो पली रहा है ना। इसी तरह गुटखा खाते हैं, कैसी कैसी गुटखे की आइटमें आ गई हैं, कैसे कैसे ये मतलब कि यूं समझो कि जहर नुमा चीजें आज हमारे माशरे में आ गई हैं और लोग खा रहे हैं लत पड़ गई है। यानी एक तो वो नशा जिसको चर्स हीरोइन आइस पता नहीं क्या क्या नाम दें, वो एक अलग है, वो उसमें तो हमारी एक नस्ल बर्बाद हो रही है, और एक ये प्रॉब्लम जो हमारी सोसाइटी के अंदर है इसमें भी हमारी नस्लें हमारा घर बार बर्बाद हो रहा है और लोग ले रहे हैं। अच्छा गवर्नमेंट इस पर रोक भी डालती है, पाबंदी भी लगती है, लेकिन रिश्वतखोर किस्म का जो तबका है ना, राशि किस्म का जो तबका है, ये मतलब ये रास्ते खोल देता है। यानी रिश्वत, मैं रिश्वत को समझता हूं आप हजार हा एक जैसे मिसाल टैंक है, ठीक है वाटर टैंक है, इतना बड़ा वाटर टैंक है, इसके अंदर आप पानी डालें और उसकी साइडों में लीकेज रख दें आप, क्या पानी टिकेगा उस वाटर टैंक के अंदर? डेफिनेट नहीं टिकेगा, निकल जाएगा, जाया हो जाएगा पानी। आप कितने ही कानून बना लें, कितने ही कानून बना लें, जब तक ये रिश्वत की लीकेज मौजूद है आपके कानून कहां एग्जिस्ट करेंगे, कहां टिकेंगे? और जब तक इन रिश्वत खोरों इन राशि मिजाज के लोगों का आप कोई सद्देबाब नहीं करेंगे, इनको मतलब के इनके साथ कुछ करेंगे नहीं, तो ये तो खुद ही दीमक है हमारी सोसाइटी के, जो रिश्वतें लेते रिश्वतें देते हैं और ये दीमक के और कई दीमक लगा रही हैं और हमारी नस्लें बर्बाद हो रही है, हमारी बच्चियों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, हमारे नौजवानों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। बेचारी शादीशुदा औरतें जब अपने शोहरा का ये मुंह देखती है तो इनके पास क्या बीतती होगी, पैसे भी नहीं होते। अच्छा अब रोजगार से भी गए, इस तरह के लोग रोजगार से भी गए, अब इलाज कहां से कराएंगे, अब कर्जा लें और ये बसावकत दुनिया से चले जाते हैं। अल्लाह इस मुसलमानों पर रहम फरमाए और इस तरह जो बीमार मुसलमानों के बारे में हम हमदर्दी करेंगे और हम दुआ करेंगे अल्लाह इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे और जो दुनिया से चले गए अल्लाह इनकी बेहिसाब मगफरत फरमाए। लेकिन प्यारे इस्लाम भाइयों अभी आप जो इस वक्त देख सुन रहे हैं
क्या आपको ये तकलीफ कम है आपकी? यानी सिगरेट छोड़ देना, पान गुटखा सिगरेट छोड़ देना, इसमें जो थोड़ी बहुत अगर हो सकता है कि आपको तकलीफ होती हो, लत पड़ जाती है, नशा एक ये वो उस तरह का नशा नहीं है जिसको हम नाजायज कहेंगे, जिस पान सिगरेट और गुटके के ताल्लुक से मैं कह रहा हूं, मगर इसमें भी बासूरत अगर खून की मिलावट वाला कोई चीज है तो फिर उसके अहकाम बदल जाएंगे। तो ये वो चीज है, लेकिन ये जो बदन को घुला रहा है तो इसको छोड़ ना दें आप यार, आज ही छोड़ दें। जी हाँ, मैं आप सबसे अर्ज कर रहा हूं, फैमिली मेंबर जरा करें यार, प्लीज कुछ करें, सिगरेट छोड़े यार। आपके माँ बाप आपको देखकर रो रहे होते हैं, तो हमारा बेटा गुटके की नजर हो गया, हमारा बेटा सिगरेट की नजर हो गया, हमारा बेटा तंबाकू की नजर हो गया। अब बीवी अपने शोहर को देखकर बेचारी कह रही होती है कि ना जाने इसका क्या होगा, और ये घर में बैठकर सिगरेट फूंक रहा है, और इसका धुआं ना सिर्फ इसको बर्बाद कर रहा है बल्कि इसका धुआं इसके साथ बैठे हुए फैमिली मेंबर को भी बर्बाद कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे, यानी छोटे छोटे बच्चे कमरे में, बिल्कुल न्यू बेबी बॉर्न ये कमरे के अंदर आपके पास लेटते, ये कहां लेटेगी बच्ची? छोटा सा बच्चा, अभी तो उसकी विलादत हुई है, अभी तो चंद महीने का, चंद साल का है, और आप बेडरूम में बैठकर, कमरे में बैठकर सिगरेट पी रहे हैं, ये बच्चा सांस ले रहा नहीं ले रहा, तो आपकी सिगरेट का धुआं आपके बच्चे के फेफड़े में जा रहा नहीं जा रहा? आप ऊपर से ऊपर रहकर अपने बच्चों को इस तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं, यानी आपको भी नुकसान, आपकी बीवी को नुकसान, आपके बच्ची को, बच्चे को नुकसान, क्या कर कह रहे हैं आप? अरे ये जो मैं बातें बयान कर रहा हूं कोई मुश्किल बातें नहीं है, कि इसको समझना मुश्किल है। आप चुप चुप कर किससे चुप चुप कर पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? अपने आप को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, पैसे बर्बाद कर रहे हैं, अपनी सेहत बर्बाद कर रहे हैं, और फिर ये बात चीजें, ये मैंने देखा है कि ये आदतें बंदे को नशे की तरफ लेके जाती हैं, फिर वो चर्स की तरफ और हीरोइन की तरफ, और फिर वो नाजायज किस्म के जो नशे हैं उस तरफ चला जाए, फिर यही थोबत उसे बदकिस्मती के साथ शराबी भी बना देती है। ले अब बताओ रहे क्या गया, शराब पिएगा, फिर ये करेगा, फिर वो करेगा, जड़ से ही ना निकाल दे इसको यार, काट दो, ये नहीं चाहिए हमको। किसी मौजज दीनी, एक रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी के सामने आप ये काम करेंगे? नहीं। अरे दांत दिखाने जैसे नहीं होते, मुंह दिखाने जैसा नहीं होता, क्यों कर रहे हैं आप ये? लम्हे की यह चंद दिनों की प्रॉब्लम रेली हो सकता है आपको आए, लेकिन सुख देखिए यार, और ये जो तकलीफ है छोड़ने की, ये उस तकलीफ से बहुत कम है जो इसकी आदत की वजह से जो बीमारी के साथ तकलीफ आ सकती है, अल्लाह ना करे। प्लीज मेरे एक हाथ जोड़कर अर्ज करता हूं, जो इस वक्त मुझे आज अभी कल सोशल मीडिया पर इन फ्यूचर देखेंगे सुनेंगे आप, मतलब देखे तो कैसी कैसी कैसे कैसे मुंह बन जाते हैं, कैसी कैसी बीमारियां आ जाती, इनके इंटरव्यूज भी आते हैं, इबरत है यार, दुनिया का वाइट प्रोडक्ट है मैं कहता हूं, ये मेरी अपनी एक है कि दुनिया सिगरेट दुनिया का वाहिद प्रोडक्ट है जिस पर कंपनी लिख रही है कि अगर मेरा प्रोडक्ट यूज करोगे तो ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह, कैंसर हो जाएगा और मर जाओगे। वरना कौन चीज कौन लिखता है कि मेरी चीज यूज करोगे तो तुम्हें नुकसान पहुंचेगा? हर कोई फायदे की बातें कर रहा होता है, मगर फिर भी ये भर ही रहा है, अरबों रुपए की सिगरेटें बिक रही है और लोग पी रहे हैं और फूंक रहे हैं, और धुआं अलग नुकसान पहुंचा रहा है। छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए, अल्लाह और उसके रसूल की रिजा के लिए छोड़ दीजिए। और बदबूदार मुंह लेकर मस्जिद में जाना वैसे ही हराम है, इबादत से जाएं ना, मस्जिद से रुक जाएं, जिक्र ना कर सके, अल्लाह को याद ना कर सके, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हुए भी हया है कि मुंह में बदबू है क्या करूं, कि बदबूदार मुंह के साथ अल्लाह का जिक्र करना यह मकरूह है। छोड़ दे, अभी छोड़ दे, और ऐसी जगह बैठे आप सिगरेट छोड़ दी, अरे बैठे ऐसे के बाद जो धुआं फूंक रहा है तो फिर तलब बढ़ जाएगी, ऐसे के साथ बैठे जो गुटखा खा रहा है फिर दोबारा दिल करेगा, अच्छा वो खुद भी कहता है यार ठीक है एक हाथ ले ले, वो एक हाथ नहीं बेरा गरक करना होता फिर तो। ऐसी सोबत छोड़ दे, ऐसी गैदरिंग छोड़ दें, ऐसे माहौल में रहे। अब तो एयरपोर्टों में देखो ना, इन लोगों के लिए केबिन भी अलग बन गई है, स्मोकर अंदर जाओ, अंदर में बैठ गए सारे एक साथ अंदर जाओ, खबरदार बाहर हमारा माहौल खराब किया तो। एक समझाने चोट कर रहा हूं, अब ये अंदर में सबको डाल दिए सिगरेट पीने वाले हैं, चलो भाई अंदर जाओ। तो मेहरबानी करें, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपने हाल पे, और खुदा ना खाता इसमें आप शुगर के, डायबिटीज के मरीज हो गए, डायबिटिक हो गई है, और अब अगर ये बीमार ये आपने मतलब सिगरेट के इस तरह की लतें पाली हुई हैं, तो सोचिए पांव कट जाते हैं यार। अल्लाह आपको और हम सबको आफियत दे, आफियत। अल्लाह अपनी जात के सिवा किसी का मोहताज ना करे। तो कहते खुद करदारा इलाज है नेस्त, अपने हाथों के किए का कोई इलाज नहीं है। फिर ये सब होने के बाद ये शेर याद आता रहेगा, जो कुछ भी है सब अपने ही हाथों के करतूत, शिकवा है जमाने का ना किस्मत से गिला है, देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत, सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। मान जाइए, अभी से मान जाइए, प्लीज मान जाइए, हैं? मान गए, मान जाइए, रुक जाइए, अपने भी बच्चों का मुंह देखें यार, ये आपकी बीमारी में और आपकी इस तरह इंतकाल के बाद इनके ताल्लुक से सोचिए तो सही, माँ बाप को देखे जरा सोचे, माँ बाप ये बूढ़े माँ बाप का चेहरा आपको इस बात पर उभारता नहीं है कि यार इन पर भी क्या, ये मतलब ये बूढ़ा बाप का कंधा क्या आपकी लाश का वजन उठाएगा, ये आपकी ये मोहताज जिंदगी को क्या ये अफोर्ड करेंगे आप। अल्लाह आफियत दे, मैं चोट करने के लिए कह रहा हूँ, अल्लाह आफियत दे, अल्लाह आफियत दे, अपने जात के साथ किसी का मोहताज ना करे, ईमान सलामत रहे, जान माल इज्जत आबरू सब अल्लाह सलामत रखे, दीन ईमान अल्लाह हमारा सलामत रखे, मगर अपने हाथों तो बर्बाद ना करो। अब आप बोलोगे मैं पानी में खोता लगाऊं बाल गीले ना हो, दीवार पे सर मारो सर पे लगे भी ना, हाथ में कोयला पकड़ो हाथ भी काला ना हो, तो अब ये फार्मूला किसके पास है भाई? नहीं है ना। तो ऐसे मतलब के मान जाइए प्लीज। डॉक्टर साहब एक और हमारे पास न्यूज थी, और वो न्यूज कुछ इस तरह की थी कि ये जो
फूड प्रिजर्वेटिव,
जो
फूड प्रिजर्वेटिव,
हाँ ये जो फूड जो है इसके ताल्लुक से भी आपसे मुझे कुछ राय लेनी थी। पहले हम इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं।
प्रोसेस्ड खाने पेट के निजाम को खराब करते हैं, अमेरिकी फूड रिसर्च में इंकिशाफ। एक तरफ दुनिया में प्रोसेस्ड फूड्स की खपत में इजाफा हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ मुख्तलिफ फूड्स रिसर्च में प्रोसेस्ड फूड से जुड़े खतरात सामने आ रहे हैं, जैसा कि पेट के अमराज, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, दिल के अमराज और कैंसर का खतरा वगैरह। एक अमरीकी रिसर्च में इंकिशाफ हुआ है कि प्रोसेस्ड फूड में इसको महफूज करने वाले अज्जा इंसान के पेट के निजाम को तबाह कर रहे हैं। प्रोसेस्ड फूड को देर तक महफूज रखने के लिए जो मुख्तलिफ केमिकल्स और अज्जा इस्तेमाल किए जाते हैं वो पेट की बीमारियां पैदा करते हैं। बुनियादी तौर पर ऐसी खाने की चीजों की जिंदगी में इजाफा करने यानी ज्यादा वक्त महफूज रखने या खाने की मसनूआत के जायके को बेहतर बनाने के लिए ऐसे केमिकल्स को इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पेट में बहुत से इंसान दोस्त बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे निजाम को सही रखने में मदद करते हैं, और प्रोसेस फूड में मौजूद केमिकल्स उन दोस्त बैक्टीरिया को नुकसान पहुँचाते हैं। इन केमिकल्स के नतीजे में बड़ी आंत की बीमारियाँ, हाजमे की खराबी और कैंसर तक होने का खतरा बढ़ जाता है। ये केमिकल मुजर सेहत साबित हो रहे हैं और इनसे खास तौर पर पेट का कुदरती निजाम बिगड़ता है, और ये पेट की सोजिश और टाइप 2 डायबिटीज का भी बायस बन रहे हैं। ये पेट में मौजूद कुदरती बैक्टीरिया और कुदरती निजाम में मौजूद अज्जा को नुकसान पहुंचाते हैं। इन केमिकल्स के साथ कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जो इंसान को इस खाने के जायके का आदी बना देते हैं और इंसान को वही ग़िज़ा पसंद करने की तरफ माइल करते हैं।
अल्लाह 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 आसानी कर, अल्लाह आसानी कर, बस ये अल्लाह भला करे हमारे मदनी चैनल का जो हमें इतनी अहम अहम रिपोर्ट और अहम अहम खबरें निकाल निकाल कर दे रहा है कि हम सेहतमंद जिंदगी गुजारें और फितनों फसाद से बचकर जिंदगी गुजारें, और हम सब अपने दीन ईमान जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत के साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। और माशाल्लाह आप देखिए अदीन नसीहत दीन खैर खाई का नाम है, ये बहुत बड़ी खैर खाई हो रही है मदनी चैनल के जरिए कि हमें बहुत कुछ उस तमाम उन चीज़ों से बचने की हमें बाकायदा तरगीब और बातें की जा रही हैं कि जिनसे हम मतलब अपने आप को बहुत सारे नुकसान से बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं ये जिसमें टाइप 2 डायबिटीज का भी जिक्र आया, मैं चाहूंगा उसको भी अगर आप इंक्लूड करें।
सबसे पहले तो ये जो फूड प्रिजर्वेटिव्स जो है ना इस पे तवज्जो दिलानी थी। आजकल जो मार्केट के अंदर सारे जो खाने मौजूद हैं, बच्चों के चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, बने बनाए जो फूड इस वक्त मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं, चिकन भी होती है, फिश भी होती है, जिनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है, ये अगर इन सब चीज़ों से बज़ाहिर ये सब इनकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, इनकी लाइफ बढ़ाने के लिए, जरासीम इसमें ग्रो ना कर जाएं, ख़राब ना हो जाएं, तो इसमें वो कुछ केमिकल ऐड किए जाते हैं, तो उनको बोला जाता है फूड प्रिजर्वेटिव्स। तो अब ये चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, खाने पीने की अशिया जो ज़्यादा देर तक रखे रहते हैं, चिकन वगैरह भी शामिल है, तो इसकी वजह से बच्चों के अंदर जो एलर्जी के अमराज, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी के अमराज, डायबिटीज, इसके बाद कैंसर, ये रिसर्च बेस है, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में है, और इसी के बाद जब केसेस प्रिजर्वेटिव यूज हुए थे, बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक्स हैं उनके अंदर तो ऐसे ऐसे केमिकल मौजूद हैं जिसमें एडिक्टिव पोटेंशियल होती है, यानी कि आपने अगर वो एनर्जी ड्रिंक पिया है तो आप लाजमी वो एनर्जी ड्रिंक दोबारा पियेंगे।
ऐसी चीजें होती हैं,
ऐसी चीजें मिली हुई होती हैं उसमें। तो इन चीजों से बचने का सबसे सेफ फार्मूला ये, आप फ्रेश ग़िज़ा खाएं, मार्केट से ले गए खरीद के खाएं, लेकिन ये फ्रोजन जो मिलती है ज्यादातर अमूमन, इससे बचना चाहिए।
अगर पोटैटो चिप्स लेने हैं तो अपने घर में ही आलू को तल के खा लें,
बिल्कुल ऐसे,
और फ्रेंच फ्राइज जैसे बच्चे
एक
खाते
एक फ्रोजन आते हैं
उसके एक एहतियाती तौर पर ये कि मतलब कि अगर वैसे कम ही खाने चाहिए, ये बचना चाहिए, लेकिन अगर खाने हैं तो फिर घर का ले लें, जूस पीना है तो घर से घर में ही निकाल रहे हैं, तो इस तरह की चीजें अपने घर में बना लें।
बिल्कुल
है, अगर चिकन है या कोई सी फ्राइड चीजें भी अगर लेनी है तो फ्रेश चिकन लेकर अपने घर में ही बना लें।
मैं सब अर्ज करूंगा कि जूस का डब्बा अगर किसी को चेक करना है ना, जूस तो पी लेते हैं, जूस पीने के बाद डब्बे को काट के अंदर से डब्बे की कंडीशन देख लें।
तो ये वो चीजें। अच्छा मुझे ये अंदाजा है कि इसमें बाज औकात वो केमिकल्स होते हैं जो आपको दोबारा वही चीज खाने पर रिकॉल करते हैं। ये हमारे साथ एक साउथ अफ्रीका में काजी अमीरुद्दीन भाई हैं, इनकी बाकायदा इसमें ये इनकी क्वालिफिकेशन है,
सही है,
और इसमें इनका ये इनके माहिर हैं इस चीज पर। तो कभी हम जैसे सफर में होते थे ना तो ये हमें बताते थे कि देखिए ये वो केमिकल्स के नाम लेते थे, ये वो चीजें हैं कि इसके खाने के बाद आपको फिर एक तड़प पैदा होगी कि यार ये मैं दोबारा खाऊं, ये मैं दोबारा खाऊं, ये मैं दोबारा खाऊं। तो ये चीजें डाली जाती हैं आइटम्स के अंदर, आदमी फिर दोबारा इसको लेने की कोशिश करता है। डॉक्टर जीरक भी हमारे साथ है। डॉक्टर जीरक, इस पर आप कुछ कहेंगे? आप मतलब ये हमारे यहाँ भी इस केस की कमी नहीं है, लेकिन वेस्टर्न कंट्री इसमें ज्यादा इन्वॉल्व है, बल्कि शायद हो सकता है कि ये वेस्टर्न जो ममालिक है ये एक भी उसका ये कमी उसका भी ये उसका तोहफा भी है कि इस तरह की चीजें शायद वहां से ज्यादा आई हैं, अगरचे हमारे यहाँ भी कमी नहीं है।
जी बिल्कुल ऐसा ही है, और जाहिर है कि तकरीबन कमोबेश 15 साल पहले जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था तो हमें एक यानी कि बाउल कैंसर यानी बड़ी आंत का कैंसर होता है, उस हवाले से उस वक्त हमारी किताबों में लिखा हुआ था कि वो ममालिक के जहां पर वेस्टर्न लाइफस्टाइल और प्रोसेस्ड फूड है वहां पे ये कैंसर ज्यादा पाया जाता है कंपेयर टू वो ममालिक के जहां पर जो है वो फ्रेश फूड खाई जाती है। तो यकीनन जो है वो इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है, और बिलखसूस जो प्रोसेस फूड में केमिकल्स होते हैं ये बच्चों के बिहेवियर को काफी मुतासर करते हैं। डॉक्टर सलमान ने ADHD का नाम भी लिया, और ये एक रिकग्नाइज फैक्ट है कि जो बच्चे ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं तो बिलखसूस जब वो कोई भी प्रोसेस फूड खाते हैं चॉकलेट्स वगैरह क्रिस्प वगैरह तो उनके बिहेवियर में जो है वो नुमाया तौर पर जो है वो ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, और डेफिनेटली इसमें एडिक्टिव एलिमेंट भी है। और दूसरा देखा जाए कि अगर एक हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस यानी नफसियाती तौर पर जो है वो भी आप इसके डिपेंडेंट हो जाते हैं कुछ कल्चर की वजह से और कुछ दीगर सहूलतों की वजह से वगैरह वगैरह।
जी तो अल्लाह हमें अक्ल सलीम अता फरमाए कि हम इससे किस तरह खुद को और अपनी फैमिली को बचाएं, यानी जो चीजें मिल रही हैं अगर चाहिए एक इजी कर देती है जिंदगी को, मगर हकीकत है कि इजी तो कर देती हैं मगर इसके साथ जो कॉम्प्लिकेशन लाती है ना उसको अभी हमारे डॉक्टर्स ने यहाँ वजात से बयान करने की कोशिश की है। कुछ कॉल्स लेते हैं।
मोहम्मद इमरान अतारी चौबारा लोहिया पंजाब से। तो मैं सब खबरें भी देख रहा था तो आज साहब का प्रोग्राम सुना अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी जेब में थी नस्वार की पैकेट अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने अभी फेंक दी है, इंशाल्लाह आइंदा भी रखेंगे। दुआ फरमा दे निगरानी शुरू
माशाल्लाह अल्लाह इस्तेकामत दे। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने कॉल करके बाकायदा, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल मोटिवेशन कॉल होती है कि एक तो मतलब कि और बिल्कुल इसको आपने कबूल करके एक कॉल कर दी कि मैं छोड़ दिया। पता नहीं आपकी बात सुनकर कितनों ने मतलब चीज छोड़ दी होंगी, यार ये दे तो मैं क्यों नहीं, और चीजें छोड़ने वाली नेकी की आदत अपनाने वाली होती है, बुराई की आदत छोड़ने वाली होती है,
बुराइयां छोड़ी जाती हैं, नेकियां अपनाई जाती हैं, अच्छी आदतें अपनाई जाती हैं, बुरी आदतें छोड़ी जाती हैं। वेल डन, माशाल्लाह, मरहबा जी, कॉल दें।
अटक से शराब बात कर रहा हूँ। मैं काफी अर्से से सिगरेट पी रहा हूँ। अभी प्रोग्राम देख रहा था, हजरत साहब का बयान सुना, तो मैं इरादा करता हूँ इंशाल्लाह आज के बाद सिगरेट नहीं पीऊंगा।
मरहबा, बहुत 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 मुबारक हो, माशाल्लाह, वेल डन, शाबाश, अल्लाह इस्तेकामत भी अता फरमाए। और बस इस नीयत को बाकी रखिएगा और जमे रहिएगा। चंद दिनों की हो सकता है कि शायद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, कहते हैं कि तलब होती है, पर मुझे अल्लाह का शुक्र इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं कभी टोबैको यूज किया ही नहीं है किसी भी उसमें, आप उसमें ले लें शेप में। माशाल्लाह, बहुत खूब, मरहबा, मुबारक हो जी, कॉल दें।
असगर महमूद अफ्तारी जेहलम से बात कर रहा हूँ। निगरानी शुरा का बयान सुन रहा हूँ, तो मैं सिगरेट नहीं करना था, तो इंशाल्लाह मैं निजत करता हूँ कि आइंदा सिगरेट तोड़ दूंगा इंशाल्लाह।
वाह माशाल्लाह, ये रैपिडली रिजल्ट, कितनी खूबसूरत है ये मदनी चैनल की, ये मदनी चैनल की मदनी बहारें, कि कितना रैपिडली आपको रिजल्ट मिलता है। ठीक है, अभी नीयतें मिली हैं, लेकिन हम उस नजर रखें कि इनकी नीयतों पर अल्लाह इन्हें इस्तेकामत भी दे और ये इस छोड़ने में कामयाब हो जाए। इसी तरह जो गुटके के आदि हैं, पता नहीं क्या क्या इसके नाम होते हैं, वो सब खाते हैं और तंबाकू की चीजें खाते हैं, टोबैको यूज करते हैं, प्लीज सब इससे छोड़ें। इसके अलावा दीगर जो नशे के आदि हैं, अल्लाह की तौफीक शामिल आ रहे तो आप भी प्लीज छोड़ें। हमारे साथ डॉक्टर सलमान और डॉक्टर जीरक दोनों मौजूद हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक बड़ी ही दिल खराश खबर आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। हमारे पास पतंगबाजी का एक अजीब सा, अजीब एक बुरा, एक गंदा और फजूल किस्म का शौक है, और कई मतलब ये गुनाहों को साथ लेकर आता है, और ये खासतौर पर पंजाब की तरफ भी ये काफी चलता है, और उसकी जो डोर होती है वो समझो ना कातिल डोर होती है, गले को काट देती है। कई बच्चे, कई जवान, कई लोग इससे मतलब के इंतकाल कर जाते हैं। पाबंदी भी लगती है, गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी लगती है। अब ये कोई ढका छुपा तो है नहीं, कोई कमरे के अंदर तो कोई पतंग उड़ाएगा नहीं कि कमरे की चार दीवार में बंदा पतंग उड़ा रहा है। सीधी सी बात है, पतंग के लिए बंदे को खुली फजा चाहिए, छत चाहिए, और उड़ती है, नजर आती है कि पतंग उड़ रही है। उसके बावजूद भी ये पता नहीं क्यों नहीं इनको मतलब पकड़ा जाता, और इनके साथ क्यों नहीं मतलब कि सही मामला किया जाता कि ये आइंदा इस चीज से बाज रहे, और किसी किसी से परेशानी आ रही है। आइए इसकी रिपोर्ट देखते हैं।
पतंगबाजी पर पाबंदी के बावजूद ये खतरनाक खेल जारी है। गुज़श्ता सालों के दौरान कातिल डोर फिरने से छोटे बच्चों समेत कई हलाकतें हो चुकी हैं।
अब जरा जोर से, मैं मानता हूँ कि ये जो मोबाइल लूट के हैं, जो पकड़ रहे हैं तो मार देते हैं, जो रॉबरी कर रहे हैं मतलब लूट मार मचाते हैं, चोरियां करते हैं, डकैतियां मारते हैं, जान ले लेते हैं, और स्ट्रीट क्राइम में जो मुब्तला होते हैं, बहुत अल्लाह उनको भी हिदायत दे, गलत कर रहे हैं, जाने ले लेते हैं। अरे भाई ये भी तो जान ले रहा है, ये भी तो जान, वो तो चुप कर आ रहा है, ढका चुप आ रहा है, फौरन भाग रहा है, ये तो खुले बंदों काम हो रहा है, और मतलब तो बड़ी तादाद में हो रहा है, क्यों नहीं रोका जा रहा है इनको? 2, 4, 6 को शरीयत के मुताबिक आप इसको मतलब के करार वाकई तौर पर ले लें, आप इंशाल्लाह ताला सब सही हो जाएगा। जी हाँ, अल्लाह ने चाहा। इसी तरह और भी कई माशरती तौर पर हमारे यहाँ जो खराबियां बढ़ती जा रही हैं, जैसे मैंने अर्ज की थी कि कुछ ऐसी चीजें जो कत्लो गारत गिरी, घर के झगड़े, फसाद, ये सारी चीजें हो रही होती हैं, ये रुक नहीं रहा है। अब ये जो कुछ हो रहा है दुनिया में, ये एक मुल्क की बात नहीं है, कई हादसात हो रहे हैं, कुछ हादसात ठीक है, कोई मतलब के एक वाकई ऐसा हो जाता है जिसे हमको लगता है कि किसका कसूर, तो बाजार को ऐसा लगता नहीं है, लेकिन कई हादसात ऐसे जिनके पीछे या तो ड्राइवर का कसूर होता है, या रूल फॉलो ना करने का प्रॉब्लम होता है, या मेंटेनेंस व्हीकल्स का नहीं हुआ होता प्रॉपरली, इसकी वजह से हादसात हो जाते हैं। तो इन तमाम सब चीज़ों को रोका जा सकता है, कहीं मैं नहीं कहता 100% इस पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन इस पर किसी हद तक काबू पाया जा सकता है। इसी तरह ये जो घरेलू झगड़े हैं, डॉक्टर जीरक से मैं अर्ज करूंगा, डॉक्टर सलमान भी चाहें तो इसमें अपनी अपना फीडबैक दे सकते हैं, कि ये जो घरेलू झगड़े हैं डॉक्टर साहब, बाप ने बेटी को मार दिया, बेटे को मार दिया, और औलाद ने माँ बाप को मार दिया, शोहर ने बीवी को मार दिया, बीवी ने शोहर को मार दिया, खुदकुशी कर ली, ये हम सुनते हैं, लेकिन कैसे हो जाता है ये सब? ऐसा जहन पर ऐसी क्या चीज सवार हो जाती है जिससे बंदा इतने बड़े बड़े अटेम्प्ट कर जाता है? जी डॉक्टर जीरक,
शख्सियत डिफरेंट होती है, लेकिन अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए सबसे पहले तो घर का माहौल होता है कि घर में लड़ाई झगड़े एक बहुत बड़ी वजह बनते हैं कि जिसमें जो है वो बंदा अपने इमोशंस और अपने जज्बात को काबू में नहीं रख सकता। और एक अरसे दराज से, ये नहीं है कि आज झगड़ा हुआ तो कल किसी ने कोई किसी को कत्ल कर दिया, महीनों बल्कि बाज दफा सालों जो है ये झगड़े चले आ रहे होते हैं। अच्छा, इसमें फिर दूसरा मेन फैक्टर ये होता है कि जैसे जो दो मियां बीवी हैं, अब अगर उनकी बचपन की लाइफ देखी जाए तो उनके वालिदैन के भी आपस में जो है ये झगड़े होते रहते हुए होंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि बाज दफा ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहती है और बंदा जो है कई दफा जो है वो डिप्रेशन, स्ट्रेस या एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है। तो एक जो है वो रीजन इसमें फिर मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम आ जाती है कि जहनी तौर पर जो है वो बंदा स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाता, फिर उसके जरिए अपने जज्बात को मैनेज नहीं कर पाता, और जैसे ही कोई ऐसा काम उसके मिजाज के खिलाफ फिर एक दफा होता है कि अब उसके जज्बात काबू से बाहर हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत में फिर जो है वो तशद्दुद की तरफ, तशद्दुद का रुख करता है। और कई दफा क्या होता है कि मारने की नीयत नहीं होती लेकिन तशद्दुद इतना शदीद हो जाता है कि अगले की जो है वो जान भी चली जाती है। हाँ, ऐसे भी केसेस है जहाँ वाकई जो है वो जानबूझकर जैसे पिस्टल से किसी ने फायर किया तो उसमें जान लेने का भी इरादा होता है। और बुनियादी बात यही है कि जज्बात जो है ना ये इनके ये मुश्तइल हो जाते हैं, इनको कंट्रोल नहीं कर पाते, और इसके पीछे घरेलू मसाइल और इनकी अपनी फिर बचपन की तरबियत।
जी, अल्लाह ताला आपको मुझे अखलाकियात के साथ जीने की तौफीक अता फरमाए। जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अखलाक की तालीम दी, नरमी की तालीम दी, बर्दाश्त की तालीम दी, सब्र की तालीम दी, कुरान में जो सब्र के ताल्लुक से आया, हिल्म की तालीम दी कि बुर्दबारी होनी चाहिए, कुव्वत बर्दाश्त होनी चाहिए, एक दूसरे को समझने का जज्बा हो, फिर तवक्कुल हो, अपने रब पर भरोसा करे, और कनाअत नसीब हो कि रोज़गार की कमी और माल की कमी की वजह से ये परेशानियां ना आए, अल्लाह ताला की इबादत की तरफ हम आए, और इस बात को भी जाने के औलाद अल्लाह के दस्ते कुदरत में है कि वो जिसे चाहे बेटी दे, बेटा दे, जिसे चाहे कुछ भी ना दे, तो इस तमाम तर चीज़ों को समझना है। इज्जत जिद्दत अल्लाह के दस्ते कुदरत में, ज़िंदगी मौत अल्लाह के दस्ते कुदरत में, रिस्क में कमी, रिस्क में कुशादगी, ये सब अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है। बंदा एक दूसरे को मार कर क्या हासिल कर लेता है, मतलब अपने लिए मतलब जहन्नम की आग जमा करना, जहन्नम अपने आप को अजाब पर पेश करना अल्लाह की पनाह, फिर कत्ल ना हक और फिर खुदकुशी हराम, यानी दोनों हराम काम करके वो दुनिया से चला गया। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह हमें अपने जज्बात को काबू में रखने की तौफीक अता फरमाए। ये तरबियत होगी, अखलाक की तरबियत अगर प्रॉपर होगी तो इंशाअल्लाह ताला इस तमाम इस तरह के और बहुत सारे वाकयात हैं जिन पर काबू पाया जा सकेगा। मदनी चैनल देखते रहें, दावत इस्लामी के दीगर दीनी काम हैं उसमें मसरूफ रहें, खुद को और अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को दावत इस्लामी के दीनी कामों में, माहौल में, आशिकान रसूल की सोबत में लेके जाएं तो इंशाअल्लाह बहुत सारी परेशानियों से बचा जा सकेगा। अल्लाह करीम आपकी और हम सबकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह करीम हमारा ईमान सलामत रखे, आमीन। बिजाहिन नबीजी लमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलैल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।